Thank you. Krishna Govinda Hare. प्रेषितमान्वधावत् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कंकणं सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विदयते गोपालचूडामणि कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः यो स्योत्प्रेक्षकवादिमध्य निधने यो व्यक्तजीवेश्वरो यः सृष्ट्वेदमनु प्रविश्य ऋषिणा चक्रे पुरःशास्तिता यं संपद्य जहत्यजामनुषै सुप्तः कुरायं यता तं कैवल्यनिरस्तयो निमभयं ध्यायेदजस्रं हरिं योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिः धर स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि यः स्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेक मध्यात्मदीपमतितीर्षतां तमोऽन्धम् संसारिणां करुणया पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम् आनन्दधामनिचिदेकरसे द्वितीये तस्मिन् पदेस्तु मम चित्तमगोचरेऽपि यत्सद्व्रजस्थितिजुषां सुहृदां कुमारादीनामधीनमिव गोचरतामुपैति యావన్నిరంజనమజం పురుషం జరంతం సంచింతయామి నిఖిలే జగతే స్ఫురంతం తావద్బలాత్ స్ఫురతి హంతరిహంతరే మే గోపస్య కోపి శిశురంజనపుంజమంజూ. అనంతకోటి బ్రహ్మాండ నాయక్ సచ్చిదానంద ఘనానందకన్ నిర్గుణ నిరాకార్ సగుణ నిరాకార్ సగుణ సాకార్ సదా సర్వదా నిర్వికార్ సర్వాధార్ సర్వాధార్ పరబ్రహ్మ పరమాత్మ స్వరూప్ భగవాన్ శ్రీకృష్ణ కే పావన్ శ్రీ చరణో మే సాదర ప్రణామ్ కర్ భగవత్ స్వరూప్ శ్రీమద్ భాగవత్ మహాపురాణ్ కో ఏవం పరమ భాగవత్ జనో కో సాదర ప్రణామ్ కర్ ఉపస్థిత్ సభీ ఆత్మకల్యాణార్థీ సజ్జనో మాతాఓ ఏవం బహనో కో సాదరాభివాదన్ కర్. శ్రీమద్ భాగవత్ కే దశమ స్కంధ మే కాలీయ దమన్ కి లీలా కే పశ్చాత్ కా ప్రసంగ ప్రారంభ కర్ రహే హై. దేఖో పూతనా కో మారా బకాసుర్ అఘాసుర్ వత్సాసుర్ ఇత్యాది అసురో కో మారా బ్రహ్మాజీ కో వశ మే కియా కాలీ కో వశ మే కియా యే సబ్ కిస్ బాత్ కి తయారీ హో రహీ హై? యే సబ్ రాస్ లీలా కి తయారీ హో రహీ హై. లగ్తా హై కి భగవాన్ దుష్టో కా సంహార్ కర్నే కే లియే అవతార్ లియే హై. బిల్కుల్ ఠీక్ హై, పరంతు సాత్ హి సాత్ భగవాన్ కి కిసి భీ అవతార్ మే జో ప్రేమ్ కి లీలా నహీ హో సకీ, ఉస్ ప్రేమ్ కి లీలా కో నిర్విఘ్న సమాప్త కర్నే కే లియే ఔర్ అప్నే ప్రేమ్ లీలా కో సర్వోత్తమ్ సిద్ధ కర్నే కే లియే భగవాన్ నే యే బాల్యకాల్ సే హీ అగాసుర్ ఆది కా మారనా చాలూ కర్ దియా. యే సబ్ రాస్ లీలా కి తయారీ హై. యది భగవాన్ శ్రీ కృష్ణ కే ఇస్ ప్రసంగ మే లీలాఓ మే రాస్ లీలా నా హోతీ తో భగవాన్ కా ఏక్ బహుత్ బడా ఉత్కృష్ట ప్రేమ్ హమ్ లోగో కో కహీ పర్ భీ దేఖనే కో నహీ మిల్తా. ప్రేమ్ క్యా చీజ్ హై? హమ్ లోగో కి బుద్ధియా సంకుచిత్ హో గయీ, జాగతిక్ విషయో కే ప్రేమ్ కో హమ్నే ప్రేమ్ కహనా చాలూ కర్ దియా. ప్రేమ్ క్యా హై యే భగవాన్ కృష్ణ సే పూచో, ప్రేమ్ క్యా హై యే గోపియో సే పూచో. తో ఉస్ రాస్ లీలా కి తయారీ హో రహీ హై యే బాత్ మన్ మే రఖతే హువే ఆప్ హమ్ సభీ భాగవత్ కి అబ్ ఔర్ కథాయే ఉన్కో భీ సునతే హై. ఏక్ బాత్ ఔర్ భీ హై, యే దశమ స్కంద హై, నిరోధ స్కంద హై, భగవాన్ మే సబ్ లీన్ హో జాతే హై, చాహే బ్రహ్మా హో, చాహే రాక్షస హో, చాహే పూతనా ఆది ఔర్ రాక్షసియా హో, చాహే కాలీ నాగ హో, కోయి హో. ఇస్కే సాత్ సాత్ భగవాన్ యే సుఖదేవ్ జీ మహారాజ్ యహాన్ समयों का प्रकृति का बड़ा विस्तार से वर्णन करते हैं। ब्रज के अंदर ग्रीष्म ऋतु कैसी थी, ब्रज के अंदर शरद ऋतु कैसी थी, ब्रज के अंदर वर्षा ऋतु कैसी थी, ये सब लीलाएं और उन समयों में भगवान क्या करते थे, ये सब बातें ये सब लीलाएं भगवान सुखदेव जी महाराज परीक्षित को सभी लोगों के बीच में समझा रहे हैं। तो ये क्या है, ये काल को भी भगवान अपने अंदर निरुद्ध कर रहे हैं। देखो एक बार भगवान से मिलना चाहिए तो नंद जी भगवान में अवरुद्ध हो गए, यशोदा जी भगवान में निरुद्ध हो गई, जितनी गोपियां थी वो भगवान के लीलाओं में ऐसी निरुद्ध हुई कि उनके मन में आया कि जो ये माखन चोरी की लीला अपने घर पर करता है, अपनी माँ के साथ करता है, वही माखन लीला की चोरी हमारे यहां भी करे। तो भगवान उनके चित्त को ऐसा चुराए कि उसके बिना उनको चैन नहीं मिला। देखो माखन चोर की बात तो ये एक जगह एक शब्द आया है कि स्तेयम स्वादवत त्यथ दधिपय, स्तेयम स्वादु अति, ये इतना सा ही आया, लेकिन बदनाम कितने हो गए, भगवान माखन चोरते थे, माखन चोरते थे, माखन चोरते थे। वास्तव में भगवान ने मक्खन नहीं चुराया, भगवान ने उनका उनकी चित्त वृत्तियों को चुराया है। ये माधुर्य प्रसंग है, माधुर्य प्रसंग में भगवान का प्रेम मुख्य होता है। ऐसा प्रेम जो शब्द स्पर्श रूप रस गंध से विलक्षण है, तब देखना आप बंसुरी का कैसा विलक्षण नाद होता है। प्रेम तो दुनिया करती है पर प्रेम नहीं करती, वो राग करती है। शब्द में, स्पर्श में, रूप में, रस में, गंध में, परंतु भगवान के साथ प्रेम होता हो तो दुनिया के शब्द स्पर्श रूप रस गंध कहीं छूट जाते हैं। और यदि फिर भी कोई कहे कि भाई संसार से प्रेम हमारा नहीं छूटता, प्रेम की वृत्ति नहीं छूटती, तो क्या करें कि भगवान में प्रेम कर लो। अब कैसे प्रेम होता है यही सब दशम स्कंद में बताते हैं। सुखदेव जी महाराज ने काली दमन की लीला के पश्चात अलग से कहा अथ है, अथ कृष्ण परिवृत है। ये जो अथ शब्द का प्रयोग करते हैं ये बहुत विलक्षण शब्द है। ये अथ जो होता है ये एक विषय की समाप्ति और दूसरे विषय का शुभारंभ है। अथ माने इसके बाद, अथ माने अब तुम आगे सुनो, ऐसे ये अथ का ऐसा प्रयोग करते हैं। ये कभी कभी तो अध्याय के बीच में करते हैं, एक प्रसंग पूरा हो गया इसलिए अथ शब्द का, ये केवल पाद पूर्ति के लिए नहीं है कि भाई श्लोक बनाना है इसमें अक्षरों की कमी आ गई इसलिए कोई ऐसा शब्द रख दो, इसलिए नहीं रखा है। वेद व्यास जी महाराज के यहां शब्दों का भंडार है, हर शब्द को जिस ढंग से यहाँ रखा है, जैसे सुनार मोती को उठा उठा करके एक जगह रखता है, किस ढंग से उसको वहां संजोता है कि मोती सोने के अंदर रख भी दिया गया और वो वहां से हिले भी नहीं और वो चिपका जाए, ऐसे ऐसे हमारे वेद व्यास जी महाराज ने ये शब्द चिपका चिपका करके और अर्थ के अंदर बहुत ही विलक्षण स्वारस्य पैदा किया है। अथ कृष्ण परिवृतो ज्ञातिभिर्मुदितात्मभिः अनुगीयमानो न्यवसत् व्रजम गोकुलमंडितम्। भगवान ने गोकुल में प्रवेश किया। बताया था ना आपको कि वसुदेव जी के यहां से क्यों आए, कि चित्त में से वे आनंद में आए। आनंद में आने के बाद सब इंद्रियों में आनंद छा गया। परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति होती है तो चित्तानुभव आनंद में परिणित होता है, और वो आनंद है वो सब जगह फैलता है, क्योंकि आनंद एक द्रव है। द्रव जैसे पानी खूब बरसने लगे तो सब जमीन डूब जाती है, ऐसे ये आनंद एक द्रव है। इस द्रव में इंद्रियां सब डूब जाएं, यही गोकुल माने इंद्रियों का समुदाय ही गोकुल है। तो जो लीला भागवत की आपके यहाँ हो रही है, माने कथा में हो रही है, ये लीला हमारे अंदर जीती जागती संजीवन को प्राप्त होती हुई होती रहे, इसलिए सुखदेव जी महाराज ये लीला सुना रहे हैं कि भगवान ने ब्रज में प्रवेश किया। उस समय में बड़ी गर्मी पड़ रही थी जो लोगों को अच्छी नहीं लगा करती, परंतु भगवान की कृपा से वृंदावन में रहने वालों को गर्मी बहुत अच्छी लगती है। वसंत ही वह लक्षित है, वसंत के समान सुंदर लगती है, क्योंकि झरने खूब बहते रहते हैं, और झरने जब ऊपर से गिरते हैं तब उनकी ठंडी ठंडी छोटी छोटी बूंदें, माने पानी जब पत्थर पर गिरता है तब उसकी छोटी छोटी बूंदें ही टक्कर खा करके फैलती है, उससे एक बहुत ही सुंदर सुखद अनुभूति होती है। इसलिए न विद्यते यत्र वनौ कसाम दवे, इसलिए जंगल में भी जाते थे भगवान गवों को चराने के लिए, तो उनको गर्मी का दुख नहीं होता था, और कमलियां खिलती रहती थी। ऐसा सुंदर वन जहां पर मोर और भंवर खूब गा रहे हैं, कोयल की बड़ी मीठी आवाज आ रही है, भगवान श्री कृष्ण अपने साथियों के साथ कहीं नाचते हैं, कहीं कृत्रिम लड़ाई करते हैं, कहीं गाते हैं, नंदितो युयुधुर जगु, ऐसे भगवान लीला कर रहे थे। वहां पर एक प्रलंबासुर था, प्रलंबासुर, वो प्रलंबासुर गोप बन करके आया, वो भी अपने माथे पर फेंटा बांध लिया और गोपों के समान बन करके उनके बीच में घुसे आया। अब इतने झुंड में क्या पता चलेगा और कृष्ण को मारेंगे, ऐसा उसने मन में विचार कर लिया, कृष्ण को या बलराम को, दोनों में से किसी को मारेंगे। अब ऐसे विचार करते करते उन बच्चों ने एक खेल किया, उस खेल के अंदर जैसे कबड्डी का खेल होता है, खेल करेंगे तो कुछ तो बलराम जी की तरफ हो गए, कुछ कृष्ण की तरफ हो गए। देखना आपको एक बात बड़ी सुंदर मिलेगी, प्रलंबासुर का वध करेंगे हमारे बलराम जी महाराज, लेकिन आगे एक जगह ऐसा प्रसंग आएगा जहां कहा जाएगा कि प्रलंबासुर को कृष्ण ने मारा। जैसे धेनुकासुर है उसको बलराम जी ने मारा, ऐसे ही ये जो है प्रलंबासुर इसको हमारे बलराम जी महाराज ही मारेंगे, पर नाम कृष्ण का लिया जाए, कृष्ण ने मारा। क्यों कहा जाएगा, कैसे कहा जाएगा, उसका कारण भी वहां प्रसंग में बता देंगे। अस्तु। तो वो प्रलंबासुर देखने लगा कि मैं कृष्ण के पक्ष में रहूं कि बलराम जी के पक्ष में रहूं। विचार किया कि बलराम जी के पक्ष में रहूंगा तो कृष्ण का विरोधी बन जाऊंगा, और जो ही कृष्ण की मेरे पर नजर पड़ेगी वो कृष्ण मुझे पहचान लेंगे, इसलिए कृष्ण का विरोधी नहीं होना, विरोधी होने से कृष्ण की नजर रहेगी, तो मैं कृष्ण के पक्ष में हो जाऊं, पक्ष में रहने से कृष्ण की नजर मेरी तरफ हरदम नहीं पड़ेगी, और वो कृष्ण सामने लोगों को देखेंगे, मैं छिपा रहूंगा। ऐसे करते वहां कबड्डी खेल रहे थे, कबड्डी कबड्डी खेलते खेलते भगवान कृष्ण तो हार गए, हमारे बलराम जी महाराज जीत गए। तो भगवान कृष्ण हार गए और तो प्रलंबासुर भी हार ही गया, उनके पक्ष में था। वहां ये शर्त थी कि देखो जो हारेगा वो चढ़ाई देगा और जीतेगा वो चढ़ेगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने श्रीदामा को अपने कंधे पर चढ़ाया, लो भाई हम हार गए तुम चढ़ो भाई। तो श्रीदामा जी ने चढ़ी लगा, ए कृष्ण हम तेरे पर चढ़ेंगे चढ़ो। भगवान कृष्ण उसको चढ़ी दी। भांडीरक नाम का एक वट वृक्ष था, वहां तक जाना था। इधर प्रलंबासुर ने देखा कि बलराम जी को तो मैं मार दूंगा, तो वो गोप बना हुआ प्रलंबासुर उसके ऊपर बलराम जी चढ़ गए। उनको क्या पता कि कौन है, चढ़ करके रवाना हुए। मार्ग में जंगल एकांत मिला तो प्रलंबासुर अपने में आ गया, अपने असुर रूप में आ गया। तो उसी समय बलराम जी ने उसका गला पकड़ लिया और धड़ाम से उसको वहीं पर पटक दिया। और पटकते ही भाई उसमें से एक अद्भुत कांति निकली और कांति निकल करके और बलराम जी में ही समा गई। बलराम जी महाराज के कारण से उसकी मुक्ति हो गई और उसी समय में देवताओं ने दुंदुभियां बजा दी। सब लोग बड़े आनंदित हो गए। ऐसे वे आपस में खेल रहे थे, खेलते खेलते मूंज के वन में चले गए, जिसको मुंजाट भी बोलते हैं, मूंज, मूंज का जंगल, उसमें भगवान चले गए साथियों के साथ। और वहां आग लग गई। आग लगने पर भगवान ने कहा तुम सब नेत्र बंद कर लो भाई। सब ने नेत्र बंद कर लिए तो भगवान उस अग्नि को पी गए। ऐसी लीला हुई। देखो भगवान ने ये तीन बार इनको जिलाया, तीन बार। आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक सब प्रकार के संताप को भगवान दूर करने वाले होते हैं, ये खास बतानी थी। अब यहां पर एक चीज आई है, एक पद आया है कि अजो गावा अजो अजा गावो महिष्यश्च, अजा गावो महिष्यश्च निर्विशंत्यो वनाद वनम। अजा का मतलब है बकरी, गाय माने गाय और महिष्य माने भैंस। तो आपने कभी भी चित्र नहीं, ऐसा चित्र नहीं देखा होगा कि भगवान भैंस को चरा रहे, भगवान गाय को चरा, भगवान बकरी को चरा रहे, ऐसा चित्र कहने कभी नहीं देखा। गाय के साथ ही आपने भगवान को देखा है। पर भागवत तो कहती है अजा गावो महिष्यश्च, भगवान बकरी भी चराते थे, भगवान भैंस भी चराते थे। तो कहते हैं नहीं ऐसा नहीं है कि लिखा है ना भागवत में, ऐसा कैसे नहीं है, लिखा है लेकिन समझने में थोड़ा फर्क पड़ रहा है। भगवान गाय ही चराते थे, भगवान भैंस या बकरी नहीं चराते थे। क्यों? कि भागवत में नहीं लिखा है, इसलिए कि लिखा है ना अजा, कि अजा का अर्थ बकरी नहीं है। ये अजा शब्द गावे का विशेषण है, अजा गावे है। भगवान का गायों से इतना प्रेम था, इतना प्रेम था कि दूध देने वाली गाय से तो सभी प्रेम करते हैं, जो दूध देने वाली गाय नहीं हो ऐसी गाय से भी भगवान का प्रेम था, उसको भी चराते थे। तो अजा गावे है, या जो दूध देने लायक नहीं रहती, या जो बाखड़ी गाय रहती वो गाय। तो ये अजा गावे का विशेषण है, अजा गावे है। और महिष्यश्च गावे है, महिष्यश्च गावे माने जो गर्भवती गाय होती थी। महिष्य का अर्थ होता है भारी, तो जो गर्भवती गाय होती उनको भगवान चराते। और जिन गायों में कभी कोई संतान पैदा ही नहीं होती या उनके कोई गर्भ रहता ही नहीं, ऐसी बाखड़ी गाय उनको भी भगवान चराते। गौ मात्र से प्रेम था भगवान को, गौ मात्र से। तो ये अजा गावो महिष्यश्च ये पद देकर के भगवान का गो प्रेम दिखाया है। भैंस बकरी पालने वाले लोग कहते हैं भागवत में ये लिखा है साहब, ये बात है नहीं। अब जिनके पास हिंदी टीका वो कहेंगे साहब हिंदी में तो लिख रखा है, अब हम जो ही कथा समाप्त करेंगे हमारे पीछे पड़ जाएंगे, देखो हिंदी में, हिंदी वाली टीका में लिखा है। पर हिंदी वाली में लिखा है उनके लिखने का कारण और है। लेकिन गंभीरता से विचार करें कि वास्तव में भगवान चराते क्या थे, गऊ चराते थे ना। भगवान ने जब भी विशेषता की बात की गऊ के लिए कही है, तो यहां अजा और महिष्य ये गायों का विशेषण है। ऐसे भगवान भाई लोगों को संतापों से दूर करते थे। फिर बरसात ऋतु आ गई, कहते हैं बरसात ऋतु तो हमारे ब्रजवासियों को बहुत ही अच्छी लगती है, क्यों 8 महीने सूर्य तपता है और 4 महीने बरसता है, आषाढ़ सावन भादव और आसो, ये 4 बरसात की ऋतु। वैसे तो खास 2 मानी गई, पर आषाढ़ का और आसोज का ये बरसना मामूली नहीं होता। आसोज के बरसने पर कहते हैं कि अरे बरसा नहीं बरस रही, मोती बरस रहे हैं, आसोज की मोती कहलाते थे। तो कहे 4 महीने सूर्य बरसता है और 8 महीने सूर्य संसार से जल को खींचता है। तो ये क्या बताते हैं भगवान सूर्य, सूर्य संसार को ये शिक्षा देते हैं कि भाई जितना आप संसार से लेते हो उससे दुगुना चौगुना आप संसार को देव। इस प्रकृति के अंदर हम लोग श्वास लेते हैं, इस प्रकृति के अन्न से हम लोग पलते हैं, तो इस प्रकृति के विपरीत मत चलो, इस प्रकृति के प्रति उदार बन करके चलो। बरसात के दिनों में देखो कभी कभी नक्षत्र दिखते हैं, कभी नहीं दिखते हैं। जिस प्रकार से कलयुग के अंदर पाखंड फैलने पर धर्म कहीं कहीं दिखेगा, कहीं छिप जाएगा, ऐसे ये नक्षत्र दिखते हैं नहीं दिखते हैं। सारी पृथ्वी हरी हो रही है, हरी, ऐसा लगता है कि मानो स्वयं लक्ष्मी जी यहां आ गई हो। खेतों को हरा भरा देख करके किसान का हृदय प्रसन्न होता है, लेकिन धनी आदमी का हृदय दुखी होता है। क्यों? धनी आदमी देखता है कि भाई अब इन किसानों के पास में इतना ये धान हो जाएगा तो हमने जो धान लिया है वो महंगा नहीं होगा, अब क्या करें, सस्ता हो जाएगा। इसलिए धनी आदमियों के मन में संताप होता है। क्यों? देवाधीनम अजानताम। अरे सबको भाग्य से मिलने वाला है भाई, ये घाटा मुनाफा भी भाग्य से होता है, संताप क्यों करो, ऐसा संताप करते हैं। कहते हैं बरसात के समय में खूब बूंदें गिरती हैं पर्वतों पर, लेकिन पर्वत कोई दुखी नहीं होते। ठीक वैसे ही जैसे संत महापुरुष होते हैं, उनके ऊपर लोग चाहे कितना ही लांछन लगाएं, कितना ही उनको अपमानित करें, कितना ही उनको लज्जित करें, उनके कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस और सारे मार्ग घास से भर जाते हैं, उस समय रस्ते का पता नहीं चलता। ठीक वैसे ही जैसे ब्राह्मण लोग वेद मंत्रों को बार बार नहीं बोले, पढ़ी हुई विद्या को नहीं बोले, तो वो विद्या एक तरह से छिप जाती है। ऐसे मार्ग छिप गए थे खूब बरसात होने पर। ऐसी ऐसी उपमाएं दी गई है। देखो रामचरितमानस में, किष्किंधा कांड में ऐसी ऐसी बहुत उपमाएं दी है। सुखी मीन अजय नीर अगाधा, जिमी हरि शरणन एकऊ बाधा, कि पानी के अंदर मछली ऐसे आनंदित है जैसे भगवान के शरण में जाने पर उस भक्त को आनंद का अनुभव होता है, गोस्वामी जी ने लिखा। ये उपमाएं अपने यहां भागवत के अंदर 20वें अध्याय में खूब दिए हैं। उस बरसात के अंदर भी भगवान गवों को लेकर के जाते थे, और जब खूब जोर से बरसात होती तो भगवान कंदराओं में जा करके छिप जाते थे। जलधारार गिरे नादान नादान आसन्ना ददृशे गुहा, गुफाओं में जाकर बैठ जाते, छिप जाते वहां, और कभी कभी अपने साथ में लाया हुआ दही और कलेवा जो कि जंगल में उनको भोजन करना था उसको ले ले करके और सबको साथ में लेकर संबोधनीय बुबुजे गोपई संकर्षणान्वित सब कह रहे आ जाओ यही भोजन कर लेते हैं, क्यों इधर उधर जाते हो। एक साथ सब जने बैठते और भोजन करते थे। देखो एक साथ सब बैठ करके भोजन करें इसकी हमारे उपनिषदों में बड़ी महिमा है। एक साथ भोजन करने का एक अलग ही महत्व होता है। अब घर में देखो एक साथ भोजन नहीं, कोई कब करेगा, वो आया मैं करके चला गया, वो आया वो करके चला गया। एक साथ भोजन की बहुत महिमा होती है। भगवान सबको एक साथ बैठा के भोजन करते थे। अब इसके बाद में शरद ऋतु आती है। शरद ऋतु के अंदर जल है वो कम हो जाता है, बड़े बड़े खड्डे हैं पहले तो भरे रहते थे बरसात में, अब शरद ऋतु आई, शरद ऋतु में पानी कम हो गया और मछलियां वगैरह खूब होती हैं, तो ऐसे तकलीफ पाती हैं जैसे थोड़े पैसे वाली लंबी चौड़ी गृहस्थी तकलीफ पाती हो, ऐसे वो तकलीफ पाते हैं। यथा दरिद्र कृपण कुटुंबी अविजितेंद्रिय है, और झरनों में कहीं पानी आता है कहीं नहीं आता है, खड्डों में कहीं पानी पड़ा है कहीं पानी नहीं पड़ा है, ठीक वैसे ही जैसे ज्ञानी पुरुष कभी किसी को ज्ञान की बात सुनाते कभी नहीं सुनाते हैं। पृथ्वी एकदम शांत हुई हुई है। जिस प्रकार से ऋषि मुनि खूब पहले तपस्या आदि करके और जितनी उछल कूद करनी होती कर लेते उसके बाद शांत हो जाते हैं, ऐसे भी शांत हो गए थे। ऐसे समय में भगवान वहां जाते गौओं को चराते थे। अब देखो शरद ऋतु की एक अलग बात है, शरद ऋतु के दिन में तो गायें चराते, अब रात्रि के समय में भगवान बंसुरी बजाते थे। देखो ये रासलीला का श्री गणेश हो रहा है, रासलीला का श्री गणेश। सुखदेव जी महाराज कहते हैं इत्थं शरत स्वच्छ जलम पद्माकर सुगंधिना। शरद ऋतु के समय में रात्रि में बहुत बढ़िया सुंदर ठंडी हवा सुगंधित हवा बहा करती थी और जंगल के पुष्प खिल जाते थे, उससे बड़ी विचित्र हवा चलती थी। भगवान बंसुरी बजाते गायों के बीच में, भगवान गायों को खूब रिझाते, अपने साथियों के साथ भगवान गायें चरा करके और फिर वापिस वृंदावन में प्रवेश करते हैं। उस समय भगवान की बड़ी निराली शोभा होती थी परीक्षित। वे गोपियां आपस में बैठ करके कृष्ण के स्वरूप का ध्यान करती थी। वर्रा पीड़ं नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वास कनक कपिशं वैजयंती चमालां रंध्रान वेणो रदर सुधया पूरयन गोपवृंदैर् वृंदारण्यं स्वपद रमणं प्राविशद गीत कीर्ति। सखियां आपस में बात करती गोपियां, ओहो ये सखी सुनो, सिर के ऊपर मोर मुकुट पहने हुए और कानों में कनेर के फूल लगाए हुए, सोने की करधनी पहने हुए, वैजयंती माला पहने हुए, बंसुरी के छेदों पर अंगुली को नचाते हुए और बंसरी को हवा से पूरते हुए और उसमें से मधुर ध्वनि निकालते हुए ये श्री कृष्ण अपने साथियों के साथ वृंदावन में जब प्रवेश करते हैं तो वृंदावन की और हमारी सबकी कैसी विचित्र शोभा हो जाती है, सबका चित्त ये हर लेते हैं। इतने में ही उनको शब्द सुनाई दिया, ये देखो कैसी सुंदर बांसुरी बज रही है। अब ये गोपियां बोलती है, एक गोपी हम लोगों ने कृष्ण के समय में जन्म लिया, हमारा जन्म लेना सार्थक हो गया। पशुओं के पीछे जाता जाता ये जिस समय में बंसुरी बजाता है, अपने होठों के ऊपर ये बंसुरी रखता है, उस समय में इसको देखते देखते कभी नेत्रों से तृप्ति का अनुभव नहीं होता, ऐसा लगता देखते ही रहे। दूसरी सखी कहती है, इतना ही क्यों कहती हो, ये आम के मंजरी और दूसरे कमल के फूल इन सब को ले ले करके और जब ये माला वगैरह पहना हुआ हम लोगों के सामने आता है तब ऐसा लगता है जैसे कोई नाटक करने के लिए कोई नट आया हुआ हो। तीसरी सखी कहती है, ए सखी हमसे तो ये वेणु अच्छी है, वेणु देखो वेणु नाम दिया है यार। आप भागवत में ये वेणु प्रसंग है ना, बंसुरी का प्रसंग, वेणु को तो संस्कृत में मुरली भी बोलते हैं पर मुरली नाम भागवत में नहीं आया है, ये वेणु शब्द आया, वेणु शब्द। वेणु का अर्थ होता है वह ई अणु, वह माने ब्रह्मानंद और ई माने विषयानंद। ब्रह्मानंद और विषयानंद ये दोनों ही जहां अणु हो जाते हैं माने छोटे पड़ जाते हैं वो वेणु है। वेणु विषयानंद और ब्रह्मानंद, विषयानंद तो खैर छोटा होता ही है पर ब्रह्मानंद भी छोटा पड़ जाता है उस बंसुरी की आवाज में। अब देखो पांच विषय है ना, पांच विषयों में सबसे पहले विषय का नाम शब्द आता है, शब्द स्पर्श रूप रस और गंध, सबसे पहला नाम शब्द का आता है। क्यों शब्द का नाम क्यों आया, शब्द का नाम इसलिए आया कि शब्द के सुनने पर ही हम या तो संसार में प्रवृत्त होते हैं और या हम भगवान में प्रवृत्त होते हैं। देखो भाई हमने पहले ही कहा था कि सवा बारह बजे का समय नींद का समय है, खूब नींद का आती, पर आप लोग भाग्यशाली हो कि उस नींद को भी आपने तिलांजलि दी और आप भागवत के लिए बड़े परिश्रम से आए हो और भगवान ने भी आपकी पूरी परीक्षा ली है, भयंकर गर्मी है, इतना तो आपने कर ही लिया, नींद को भी छोड़ा आराम को भी छोड़ा, गर्मी से आप यहाँ आए तो देखो भाई भागवत सुनने का तो मौका मिलता तो रहता ही है परंतु और ज्यादा मिले और जो अपन विचार करें तो अपने को विशेष लाभ होगा। तो शब्द का नाम पहले दिया, शब्द का नाम पहले क्यों दिया कि शब्द के द्वारा हम संसार में भी जा सकते हैं, शब्द के द्वारा हम परमात्मा में भी लग सकते हैं। तो भगवान ने देखा कि अपने ऐसा करो शब्द सुनाओ और शब्द सुना करके उन शब्दों के द्वारा हम लोगों को अपनी ओर आकृष्ट करें, तो ऐसी सुंदर बंसुरी बजाई। भक्तों ने कहा है कि तो ऐसी सुंदर बंसुरी बजा जो तुमने यमुना तट पर बजाई थी, ऐसी बंसुरी बजा। तो एक सखी बोलती है कि देखो हमसे तो ये वेणु बड़ा अच्छा है, ये मुरली बड़ी अच्छी है, क्योंकि इस वेणु को, इस मुरली को भगवान अपने होठों पर रखते हैं, अपने अधर का जो अमृत है, होठों का जो अमृत है उसका पान करने का इसको मौका मिलता है, ऐसा इसका सौभाग्य है। देखो और हे सखी, चौथी सखी कहती है कि देखो वृंदावन का भाग्य देखो, आज वृंदावन की सब जगह बड़ी शोभा हो रही है। बंसुरी का नाद सुनकर के हमारे मयूर नृत्य मत उन्मत्त होकर के नृत्य कर रहे हैं। नृत्य मयूर मत्त मयूर नृत्यम। एक दिन कहा अरे तुम मयूरों को देख, हिरणों को देखो ना, हिरण जो उछलते उछलते कभी थकते नहीं है, ये हिरण एकदम खड़े रहते हैं। हिरण होता है वो शब्द का बहुत कच्चा होता है, इसीलिए हिरण को मारने से पहले वो लोग पूंगी बजाते हैं, पूंगी बजाने से हिरण उस शब्द को सुनकर के वही खड़ा रहता है, इतने भी बेचारे को वो बाण मार देते हैं। तो शब्द ग्राही है हिरण सबसे ज्यादा। वो देखो मुरली को सुनते ही कैसे ऊंचा मुख की आवाज, ऊंचा कान की आवाज मस्ती से सुन रहा है। वृंदावन में पशु हो, पक्षी हो, हम हो, सबका इसने मन, सबका मन इसने जो है चुरा लिया है कि क्या बात करती हो सखी, ये तो वृंदावन में हरदम रहने वालों की बात है, तुम जरा आकाश में देखो ना, ये आकाश में देवियां ये अपने विमानों में जा रही है और वृंदावन से बंसुरी का नाद, कृष्ण के बंसुरी का नाद सुनकर के ये विमानों में बैठी बैठी मस्त हो रही है। ऐसी मस्त हो गई उनके चोटियों का फूल नीचे गिर रहा है उनको पता ही नहीं है, वे अपनी सुदबुद खो बैठे हैं। आकाश में रहने वाले देवांगनाओं की ये दशा है और गवों की देखो दशा, देखो गाय घास खाती है तो जिस समय बंसुरी का नाद सुनती है तो न तो वो घास को बाहर निकाल सकती है, नीचे गिर सकती है, मुंह में यूं ही रह गया। और उस गाय का बछड़ा है वो दूध पीते समय में, बछड़ा देखो कैसे थोपा लगा लगा के दूध पीता है, दूध पीते समय में जब वो बंसुरी का नाद सुनता है तो आओ अपनी माँ का थन है वो मुंह में ही रह जाता है और मुंह में दूध भरा हुआ है, वो गले से नीचे नहीं उतरता है, कैसे एकाग्र हो जाते हैं, वो भूल जाते हैं कि हम दूध पी रहे हैं। छोटे छोटे गाय के बछड़ों की बात है। प्रायो बताम विहगा मुनयो वनेस्मिन् कृष्णे क्षितम तदुदितम कलवेणु गीतम। मेरे तो बंद के लिए कहा था, चालू कर दिया। मैं देखता हूं बात क्या, हवा कैसे आ रही थी। तो ये जो पक्षी है, इन पक्षियों को देखो, ये पक्षी भी चुपचाप आंख बंद करके ऐसे बैठे हैं जैसे कोई ऋषि मुनि ध्यान में बैठे हुए हों। नदियों को देखो, नदियां जो बहुत कलकल करके बहा करती है, ये नदियां भी चुपचाप शांत हो गई है। गृहंती पाद युगलम कमलोपहारा, अपने अपने लहरों के अंदर कमल का उपहार लिए हुए कृष्ण के चरणों की तरफ जाने के लिए तैयार हो रही है। ऐसे ये नदियां भी उसके शब्द से प्रभावित हुए हैं। देखो देखो यमुना नदी का तट देखो, इस तट के ऊपर कैसे जो है ये पशु पक्षी आदि स्तब्ध होकर के खड़े हुए हैं यहां। और गोवर्धन पर्वत है, इसके ऊपर जब श्री कृष्ण जाकर के वहां के झरनों को देखते हैं, वहां के खिली हुई वनस्पतियों को देखते हैं, तो मानो गोवर्धन का बड़ा वे सम्मान बढ़ा रहे हैं। ऐसी ऐसी वे आपस में बातें कर रही थी गोपियां। यह है आसूस के महीने की बात। अब आया कार्तिक का महीना। कार्तिक के महीने में अब देखो थोड़ा सावधानी से सुनना, भगवान की लीला में कभी 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 ऐसी बातें आ जाती है कि हमारी बुद्धि की खराबी हम भगवान में देखने लग जाते हैं। तो आप लोगों ने इतनी भागवत सुनी है इतनी देर तक, तो बुद्धि बड़ी निर्मल भगवान की कृपा से निर्मल ही रहेगी, फिर भी थोड़ी बुद्धि को और अपने नियंत्रण में ला करके भगवान की प्रेम की लीला की तरफ विचार करना है। लीला का अंतरंग स्वरूप क्या है वो देखना है, लीला के बाहरी रूप को नहीं देखना है, लीला के अंतरंग रूप को देखो। सुखदेव जी महाराज अब बहुत मस्ती के साथ इस लीला को बता रहे हैं कि कार्तिक के महीने में स्त्रियां जल्दी उठती हैं, जल्दी उठ करके स्नान करके पार्वती की उपासना करती हैं। जिनका विवाह नहीं हुआ होता है वे भविष्य अच्छे पति की प्राप्ति के लिए कात्यायनी की पूजा करती है, और जिनका विवाह हो चुका होता है वे अपने वैवाहिक जीवन में पूर्ण शांति के लिए, पति के अभ्युदय के लिए, पति के लाभ के लिए वे कात्यायनी की पूजा करती है। माने चाहे विवाह हुआ हो चाहे विवाह न हुआ हो, सब प्रकार की स्त्रियां कार्तिक में कात्यायनी की पूजा करती है। तो अपने गोकुल के अंदर भी ऐसी स्त्रियां सब जल्दी उठ करके स्नान करके और कात्यायनी की पूजा के लिए बैठ गई, और पूजा में बैठ करके वो क्या बोलती है, कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नन्द गोप सुतम देवी कुरुत मे पतिम मे कुरुते नमः। कि हे कात्यायनी, हे महामाही, हे योगिनी, हे भगवती, हे महामाये, हमारी आपसे प्रार्थना है कि नंद जी के बेटे को हमारा पति बना दो। अब विवाहिता स्त्री ऐसी बात कहती है, अविवाहिता बोले तब तो कुछ समझ में भी आए, और विवाहिता भी कैसी विवाहिता हो, बूढ़ी बूढ़ी विवाहिता, बूढ़ी बूढ़ी गोपियां भी उनसे प्रार्थना करती हैं कात्यायनी से कि हे कात्यायनी महामाये, ऐसी कृपा करो कि नंद नंदन हमारा पति हो जाए। कहेगी माँ जी, आपके लकड़े, आपके जो है शरीर के लकड़े तो मसान में पहुंच गए, आप क्या बोलती हो, कि बिल्कुल सही बोलती हूँ, बहुत सही बोलती हूँ। तो आप पति की इच्छा के लिए कात्यायनी को पूजित करती हो, कात्यायनी की पूजा करती हो पति के लिए, कि हाँ पति के लिए, क्यों आप तो सधवा हो, सधवा है सब है लेकिन हमारे भाव को समझिए, पति की इच्छा क्या है, ये पति भाव से भगवान की उपासना की इच्छा है। जैसे भगवान की उपासना होती है, कोई बाल उपासना करते हैं, हम लड्डू गोपाल की उपासना करते हैं, कोई पुत्र भाव से भगवान की उपासना करते हैं, कोई पिता भाव से उपासना करते हैं, कोई मातृ भाव से उपासना करते हैं, ये ऐसे पति भाव से उपासना की इच्छा है, उपासना की। आज के इस गए गुजरे जमाने में भी यदि कोई स्त्री अपने पति ऐसे ये बोलती है कि मैं मेरे पति के रूप में भगवान की उपासना करती हूँ, तो क्या उस पति के मन में कोई नाराजगी पैदा होती है, नहीं होती, नाराजगी पैदा नहीं होती। पति भाव है भगवान में अपना पत्नी भाव और भगवान को पति माना। संतों ने तो कहा है ऐसा, संतों की वाणी में पतिव्रता का अंग आता है। उन संतों ने अपने आप को भगवान की स्त्री कहा है कि हम तो आपकी स्त्री हैं और आप हमारे पति हो। मैं कभी विधवा होने वाली नहीं हूं क्योंकि आप कभी मरने वाले नहीं हो। मीरा जी को कहा विवाह के पश्चात भी कि मीरा जी आप तो अब यहां रहती हो, ससुराल में रहती हो और आप पति को छोड़कर कृष्ण को क्यों मानते हो। तो मीरा जी ने यही कहा कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मेरे तो वही पति है, वही कि आपके वो पति है जिनके साथ विवाह किया है वो, कि विवाह जिसके साथ हुआ उसकी उसके वो पति है। मेरे पति भगवान है, मेरे पति हो। मेरे से अर्थ है आत्मा। संसार का पति है वो उसी का ही पति है जो संसार की चीज है। शरीर संसार का है, आत्मा है वो भगवान का है। तो संसार का पति है वो संसार का ही पति है, मेरा पति तो भगवान है। तो यहां पति भाव से उपासना के लिए पार्वती से प्रार्थना करती है। देखो कैसी विचित्र बात है कि आप हमें कृष्ण को पति रूप में दे दीजिए। पति रूप में दे देने का अर्थ है कि हमारी आराधना को सफल कर दीजिए। इसमें दो बात निकलती है, एक तो भगवान को पति रूप से माने, दूसरी इस पति भाव के मानने में मेरा कितना ऊंचा भाव है, इस भाव को आप खूब अच्छी तरह से समझती, इसलिए आपका आशीर्वाद चाहिए, आपका प्रेम चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए। माने भगवान की तरफ लगने में किसी बड़े का आशीर्वाद, भगवान का आशीर्वाद हो, गुरुजनों का आशीर्वाद हो, इनके आशीर्वाद से जो पार पड़ने वाली है वो हमारी साधना से पार पड़ने वाली है। हमने तो कृष्ण को पति मान लिया, पर आपकी कृपा हमको मिले तो ये हमारा पतिभाव प्रगाढ़ बने, प्रगाढ़। तो भगवान के पास में ये भाव पहुंच गया। भगवान ने देखा कि अरे छोटी बड़ी सब स्त्रियां मुझे पति भाव से भजने के लिए प्रातःकाल जल्दी उठ करके यमुना में स्नान करके ये कात्यायनी की पूजा करती है। तो भगवान देखो आप देख रहे ना, वृंदावन में जाओ तो आप वृंदावन में बिहारी जी के वहां दर्शन करने जाओगे तो सब मंदिर जल्दी खुलते हैं, पर हमारे बिहारी जी का मंदिर जल्दी नहीं खुलता है। वहां बोलते हैं कि साहब ये रात को रास में जाते हैं बिहारी जी, मधुवन में रास होती है वहां जाते हैं, तो रास में आने पर हमारे बिहारी जी को देरी हो जाती है। देरी हो जाने से हमारे बिहारी भगवान ये थोड़ा विश्राम करते हैं, इसलिए फिर थोड़ा सुबह विलंब से उठते हैं, विलंब से उठते हैं, और फिर जो है इनका मोदक का भोग लगता है, मक्खन का भोग लगता है, लड्डू और मोदक ये लेकर के, और फिर वो मंदिर में आकर के विराजमान होंगे, फिर भक्तों से मिलेंगे। तो भगवान आज सुबह बहुत जल्दी रवाना हो गए अपने घर से। क्यों रवाना हुए? देखो न तो यहां कोई ऐसी बात आई कि नंद जी से कहा, न उन्होंने अपने यशोदा जी से कहा, किसी से कुछ नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? कि जो उपासना करने वाली है ये गोपियां, इन्होंने भी किसी से नहीं पूछा कि हम नंद नंदन को अपना पति माने कि नहीं माने, पूछा नहीं। तो भगवान भी गोपियों के पास जाने में किसी से पूछते नहीं है, और वे सब स्त्रियां गोपियां अपनी सहेलियों के साथ आती हैं, संयुक्त रूप से आती हैं, संयुक्त रूप से वे साधना करती है। तो भगवान ने भी क्या क्या अपने सखाओं को साथ मिलेगा, तुम आओ मेरे साथ। करे काना तुम सुबह पहले हमको जगाओगे, सुबह नहीं, आज तो सुबह पहले चलना पड़ेगा मेरे साथ। चलो भाई तूने कह दिया चलेंगे। तो भगवान अपने अपने साथियों को साथ में लिए और अन्योन्याबद्ध बाहवे, एक दूसरे के सिर के ऊपर हाथ रखे हुए, बड़े गुत्थम गुत्थे होते होते वहां पर नदी के किनारे पहुंच गए। वहां जाकर के देखा कि सब स्त्रियां स्नान करती हैं, इन्होंने वस्त्र यहां बाहर रख दिए, तो भगवान ने जाकर वो वस्त्र ले लिए। ये चीरहरण नीला है। ये बताया कि भाई उच्च भाव से देखना, ये बहुत उच्च भाव से देखने की बात है। कई कारण है उच्च भाव में, क्योंकि भगवान ने भी बड़े उच्च भाव में ये वस्त्र उठाए थे। भगवान की उम्र कितनी है अभी? 7 वर्ष की हो, 7 या 8 वर्ष की उम्र है अभी भगवान की। आजकल के इस पतित समय में भी छोटे छोटे 8-10 वर्ष के, 11-12 वर्ष के बच्चे स्त्री पुरुष का भेद नहीं मानते हैं। स्त्री क्या है, पुरुष क्या है, ये इनका भेद नहीं मानते और वे ऐसे नग्गे रहते हैं, ऐसे नग्गे रहते हैं। भगवान ने ये 7 वर्ष में लीला की थी। यदि कोई आदमी मैली से मैली, खराब से खराब, खराब से खराब दृष्टि बनाए भी, तो अभी उसकी खराब दृष्टि चल नहीं सकती, ये भगवान 7 वर्ष के हैं। और जिनके कपड़े लिए जा रहे हैं वो सब भगवान से बड़ी उम्र के हैं, 60 वर्ष के। भगवान जैसे तो पोते पड़पोते हो जाए उनके, भगवान उनके कपड़े क्यों लेते हैं? अरे भगवान भगवान है। ये वस्त्र होते हैं ना, ये वस्त्र आवरण का प्रतीक है, आवरण है, हमारे शरीर का आवरण है। तो उन गोपियों ने क्या किया कि वस्त्र है वो रख दिया या किनारे, यमुना नदी के किनारे, और स्वयं जाकर स्नान करने लगी। तो भगवान ने वस्त्र ले लिया। वस्त्र लेने का अर्थ है कि उनकी भक्ति को स्वीकार कर लिया। हे गोपियों, अब तुम्हारे अंदर जो मेरी मिलन में, मेरे मिलन में जो एक आवरण शक्ति बाधा दे रही थी, वो आवरण शक्ति मैंने ले ली है, तुम चिंता मत करो, तुम तुम्हारी भक्ति को करती रहो। और उस आवरण को, माने वस्त्र को लेकर के भगवान कदंब के ऊपर चढ़ गए, कदंब वृक्ष पर, और कहने लगे कि देखो सखियों, देखो गोपांगनाओं, आओ आओ, तुमको यदि चाहिए तो मैं तुमसे सत्य बात कहता हूं कि तुमने बहुत अच्छा जो है व्रत किया है। मैं पहले भी देखो कभी झूठ बोला नहीं हूं और आगे भी मैं झूठ नहीं बोलूंगा। न मयो उदित पूर्वम वा अनृतम, मैंने कभी झूठ नहीं कहा है, इसलिए आप यहां आओ और एक एक करके आओ, एक एक करके आओ और अपने अपने कपड़ों को ले जाओ। तो भाई कैसी उत्कृष्ट लीला है ये, प्रेम की उत्कृष्ट लीला। उन गोपियों को तो भगवान की प्राप्ति के लिए, क्या ज्ञान के अज्ञान के आवरण को दूर करने के लिए कुछ भी नहीं करना पड़ा, एक ही काम करना पड़ा, भगवती के सामने जाकर कहा कि हमारा पति हो और हम आपको नमस्कार करती है। सिवाय नमस्कार के उनके कोई साधना नहीं थी, नमस्कार के अलावा कोई साधना नहीं थी। और भगवान ने कैसी कृपा की कि गोपियां जब उनको पुकार रही है, प्रातःकाल जल्दी उठ करके यमुना नदी में वो स्नान कर रही, तो भगवान आराम से सो कैसे सकते हैं? भगवान आए और आते उन्होंने कपड़े उठा लिए, अर्थात उनके अज्ञान का आवरण दूर कर दिया और कहा अब एक एक जने आओ और अपने अपने वस्त्र ले जाओ। तो गोपियां इस लीला को समझ नहीं सकी कि अरे ये क्या कहना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं। तो पहले तो गोपियों ने उस समय में हंसी मजाक समझी कि ये कृष्ण हंसी मजाक करता है, और फिर जब उनको लगा कि नहीं, कृष्ण तो हमको कपड़े देने वाला नहीं है, पानी में से निकल करके हम उसके पास जाए, तो उनको शर्म महसूस हुई। ये जो लज्जा हुई भगवान के पास जाने में, जो एक लज्जा है, एक संकोच है, ये क्या था? ये पूर्ण अपनेपन में एक बाधा थी, भगवान के अपनेपन में, अपना मानने में, भगवान को अपना मानने में ये लज्जा और संकोच ये बाधक चीज है, ये बिचारी वो जानती नहीं थी, इसलिए उनको बड़ा संकोच हो रहा था। संकोच हो रहा था, वो कहने लगी, देखो देखो, ये कंठ तक पानी में यूं बोलने लगी, देखो कृष्ण श्याम सुंदर, हम जान गए कि तुम नंद जी के लड़के हो, हम तुम्हारी दासी हैं, तुम हमारे कपड़े लेकर चले गए, या तो हमको कपड़े दे देना, नहीं तो हम नंद जी को जाकर तुम्हारी शिकायत करेंगे। ये देखो ये क्या हुआ, गोपियों के कहने में एक त्रुटि हुई, एक भूल हुई। क्या भूल हुई, कि आप मेरी तो दासी हो, माने कह रही हम तुम्हारी दासी है, श्याम सुंदर ते दास्य है, हम तुम्हारी दासी है, और दूसरी तरफ तुम कहती हो कि हम नंद जी को जाकर तुम्हारी शिकायत करेंगे, तो मेरे से बड़ा आपके चित्त में नंद जी है। इसका मतलब है कि मेरी भक्ति के अंदर आपका अभी और का मिश्रण बाकी है, अभी आपकी भक्ति में कमी है, ये अनन्य भाव नहीं हुआ, इसको व्यभिचरित भक्ति बोलते हैं। भक्ति में तो केवल केवल एक भगवान ही होता है, दूसरा कोई होता ही नहीं, दूसरा कौन होता है। मीराबाई गई वृंदावन में ठाकुर जी के दर्शन करने, ठाकुर जी के दर्शन करने के बाद मीराबाई ने कहा कि भाई इस ब्रज में तो बहुत संत रहते हैं, हम एक संत के दर्शन करना चाहते हैं, कि महाराज एक संत है, बहुत बड़े संत है, वो बहुत अच्छे संत है, बड़े वैराग्यवान, एक घास फूस की कुटिया में रहते हैं, उनके पास अनेकों शिष्य मंडली है, वैराग्य मंडली है, उनके वैरागी वैरागी सब, किसी के पास सिवाय लज्जा निवारण के कपड़े के अलावा कोई सामग्री नहीं है। अच्छा, इतने ऊंचे मार, और नहीं मीरा भाई क्या बताएं, ऐसी भक्ति करते हैं वो, उनके पास रहने वाले वे खूब भक्ति करते हैं, खूब भगवान का नाम लेते हैं। मीरा भाई ने कहा रे तब तो हम जाके दर्शन करेंगे। तो उनकी जो कुटिया जिसके चारों तरफ बाड़ लगी हुई, वहां पर गए, फलसे तक गए, तो एक सेवक को अंदर भेजा कि भाई देखिए आओ महाराज के हमें दर्शन करने। तो एक सेवक गया, कहने लगे महाराज बाई साहब आए, मीरा बाई साहब। अच्छा मीरा बाई आई है, आपके दर्शन करना चाहती है। तो फिर उनके शिष्यों ने कहा कि हमारे महाराज तो किसी स्त्री से मिलते ही नहीं है, किसी स्त्री से बात नहीं करेंगे, मिलते नहीं है, तो अच्छी बात है। वो गए जाकर के कहा कि भाई साहब क्षमा करें, कि क्या हुआ महाराज, आराम कर रहे हैं क्या? कि आराम तो नहीं कर रहे हैं, हमें मालूम नहीं था कि महाराज का एक नियम है कि वे किसी स्त्री से मिलना नहीं चाहेंगे। अच्छा 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 अच्छा, ओहो, तो मैं यहीं से ही प्रणाम कर लेती हूँ, इतने ऊंचे महात्मा है, यहीं से ही प्रणाम कर लेती हूँ। प्रणाम किया और कहा कि हे महात्मा जी, मुझे मालूम नहीं था, मैंने तो देखा कि इस संसार में पुरुष करके एक केवल कृष्ण ही पुरुष है, दूसरा कोई पुरुष है ही नहीं, दूसरा कोई पुरुष नहीं है, पुरुष एक कृष्ण ही है, पर आपने मुझे नारी समझ करके मिलना उचित नहीं समझा, तो आपका नियम है साहब, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। रवाना हुई तो संतों को पता चला कि उस मीराबाई ने जाते जाते प्रणाम करते करते ये बात कही कि मुझे ये मालूम नहीं था कि एक भगवान के अलावा भी कोई पुरुष है क्या। उन संतों के एकदम वो तो भाव में डूब गए, अरे कितनी ऊंची उसकी आराधना है, कहा अब तो हम उससे मिलना चाहेंगे। मीराबाई को फिर बुलाया गया, मीराबाई का बड़ा आदर किया उन्होंने, कहे मीराबाई हम तो देखो कितने एकांत में रहते हैं, लेकिन तुम्हारा जो इतना ऊंचा भाव है कि एक कृष्ण के अलावा वृंदावन में तो कोई पुरुष रहता ही नहीं है, बहुत ऊंची बात कही। हमारी दृष्टि में तो स्त्री और पुरुष का भेद, लेकिन तुम्हारी दृष्टि में कोई भेद नहीं है, तुम तो मेरी साधना से आगे बढ़ी हुई हो। ऐसे एक दृष्टि रहनी चाहिए, एक दृष्टि। हम जाकर के नंद जी को बोल देंगे, तुम्हारी शिकायत करेंगे, इसका मतलब तो ये हुआ ना गोपियों कि तुम्हारे हृदय में मेरे से भी ऊंचा स्थान किसी और का है। और एक तरफ आप कहती हो कि हम तुम्हारी दासी हैं, यदि तुम मेरी दासी हो तो मैं कहूं वैसा करो, तुम हमको नंद जी के बीच में बात क्यों छेड़ते हो, नंद जी शिकायत का डर क्यों दिखाते हो, तुम यहां आओ और अपने कपड़े ले जाओ। तो कहा कि अब क्या करें, अब जो भी, ये एक तरह से भगवान ने कहा कि यदि तुम मेरी दासी हो तो ले जाओ। तो कहा दासी तो है हम आपकी, है तो ले जाओ कपड़े। अब वो बिचारी बड़े लज्जा और संकोच में आई, संकोच में आई, भगवान की कुछ ऐसी कृपा हुई, ऐसी कृपा हुई। देखो भाई, शीतकर्षिता का तो मतलब है कि ठंड में कांप रही थी, पर ये ठंड में कांपना नहीं है, ये है जड़ता में कांपना, जड़ता में। शीत और जड़ ये दोनों एक ही वाले, अपने मारवाड़ी कहावत भी है कि भाई आज सर्दी बहुत है, कई को आज जाडो बहुत है, बहुत जाडो पड़े, जाडो पड़े आज, जाडो, जाड़ा माने सर्दी। तो शीतकर्षिता माने जड़ता के अंदर कांप रही, अभी उनके अंदर जड़ता है इस बात की कि कृष्ण के अलावा भी कोई और इससे ऊंचा है, ये जड़ता कम थोड़ा ही है। इस जड़ता से वो कांपने लगी और फिर जो है वो भगवान के पास आई, आई भी एक ही बात से, यदि तुम मेरी दासी हो तो मेरे पास आओ, दासी हो तो मेरे पास आओ। इधर उनके अंदर लज्जा भी है, संकोच भी है, और इधर भगवान से अपनापन भी है। अब सबका संतुलन करके देखा जाए, अपनापन ज्यादा था, उस अपनापन के कारण से लज्जा संकोच जो कुछ भी था उनको साथ में लिए लिए गोपियां भगवान के पास पहुंची, भगवान खुश हो गए, शुद्ध भाव प्रसादित है। गोपियों ने कहा, भगवान ने कहा, वाह मैं तुम्हारे शुद्ध भाव से बहुत आनंदित हुआ हूं। गोपियों जरा तुम विचार करो, मुझे केवल एक नंद जी का बेटा मत मानो, मैं सर्वव्यापक हूं, मैं इस पानी के अंदर भी रहता हूं और तुम्हारे कपड़ों के अंदर भी रहता हूं, तुम्हारे अंदर भी रहता हूं, मेरी व्यापकता को देखो। तुमने एक मुझे सीमित दायरे में संकुचित कर दिया कि यह एक नंद नंदन केवल यही बैठा हुआ है। तुम मुझे पति चाहती हो ना, तुम्हारे पति में भी मैं ही बैठा हुआ हूं, जब तुम्हारे कपड़ों में मैं हूं, इस जल में मैं हूं, तुम्हारे शरीर में मैं हूं, तुम्हारे पति में भी मैं हूं, फिर तुमको मेरे से अपने पति से अतिरिक्त मुझे पति बनाने की क्या जरूरत थी। यूयम विवस्त्रा यदपो धृतव्रता व्यगा हतैत ददुदेव हेलनम बद्ध्वांजनि मूर्ध्यः पर्णुत्तयेऽङ्गस कृत्वा नबोधो वसनम प्रगृह्यताम। अपने अपराध को दूर करना हो तो गोपियों सबसे बड़ा साधन क्या है, ध्यान से सुनना हो, नमस्कार करना, नमस्कार। तुमने बड़ा अपराध किया है आज, अपराध, अपराध करो तो नमस्कार करके उस अपराध को दूर करो। भगवान की वाणी का ऐसा प्रभाव पड़ा कि उस समय में उन्होंने सबने भगवान को प्रणाम किया, और भगवान को प्रणाम करने के बाद भगवान ने उन सबको वस्त्र दिए। देखो पहले तो उन्होंने आवरण को भगवान ने लिया, और यदि उन्होंने अज्ञान का आवरण लिया था तो वापस ये वस्त्र क्यों दिए। यहां देने का अर्थ है कि तुम्हारे अंदर अज्ञान का आवरण तो मैंने ले लिया, अब ये व्यावहारिक आवरण है, व्यावहारिक आवरण को तुम स्वीकार करो। तो व्यावहारिक आवरण समझ करके उनको दिया, तो गोपियों को बड़ा लज्जा का अनुभव हुआ। दृढ़ प्रलब्धास त्रपया सहा पिता, त्रपया माने लज्जया, त्रपा बोलते लज्जा को, लज्जा आई उनको। और फिर उन्होंने भगवान से वस्त्र लेकर के पहने, लेकिन पहन करके और पहन के नाभ्य सूयन, भगवान अब ध्यान से सुनना, भगवान में कोई दोष नहीं दिखाई दिया उनको। जो अब भगवान ने जब आवरण उनका हटा लिया, अज्ञान का आवरण, तब उनको भगवान को भगवान देखने का एक नया ज्ञान मिला और भगवान में दोष नहीं देखा। अरे हमारा अज्ञान आवरण दूर हो गया, हमारी लज्जा, हमारे संकोच, जिसके कारण से हम भगवान से अपने को अलग मानते थे, नमस्कार आदि करने से अब हमारा ये संकोच दूर हो गया। नाभ्य संग नाभ्य सूयन, और प्रिय संग निर्वृता, अपने प्रीतम की उपलब्धि देखकर, प्रीतम का सानिध्य देख करके उनको बड़ी शांति मिली, बड़ी शांति मिली। ऐसे उनके शुद्ध भाव को देखकर भगवान ने कहा, देखो तुमने तो संकल्प किया था, अब तुम्हारे संकल्प को पूरा करने की जिम्मेदारी मेरी है। अब मौका आएगा तो मैं तुमको अपने पास में बुलाऊंगा और मैं जिस समय रास करूंगा उस रास में तुमको मेरे साथ उपस्थित होना पड़ेगा। जो मेरे अंदर प्रेम कर लेता है उसका फिर संसार में यहाँ आने जाने वाले कर्म के चक्र से पिंड छूट जाता है। जैसे कोई चना है, गेहूं है, चावल है, कोई भी पदार्थ है, बाजरा है, मकई है, इनको पानी में उबाल लो, खूब उबाल लिया, या गरम गरम मिट्टी के अंदर इनको खूब जो उबाल लो, सेक लो, फिर उनकी खेती करो, तो क्या वो फल देने वाले होते हैं कि नहीं होते? तो भर्जिता क्वथिता धाना प्रायो बीजा नेश्यते। ऐसे ही जो अपने कर्मों को मुझे अर्पित कर देता है और कर्म सामग्री को मुझे अर्पित कर देता है, फिर उसके द्वारा जो कर्म होता है वो कर्म संसार के लिए नहीं होता, वो मेरी भक्ति का साधन बन जाता है। इसलिए जाओ, अब निश्चिंत हो जाओ, और जब मेरी रासलीला हो तो उस समय तुम आ जाना। जिस बात को लेकर के तुमने यहाँ ये कार्तिक का व्रत किया है उसी बात को पूरा करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। यद उद्दिश्य व्रतमिदं चेरु आर्यार्चनम सती ही। देखो भगवान ने भी कहा सती ही, ये सती बहुवचन, द्वितीय का बहुवचन, न सती माने आप, इन सतियों को भगवान ने इस प्रकार से कहा। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, ध्यान से सुनना हो, वो सतियां वहां से रवाना नहीं हुई, भगवान के वचनों को सुनकर के ऐसी तन्मय हो गई, भगवान का दर्शन करके, नेत्र बंद करके भगवान के चरणों का ध्यान करने लगी। ध्यान क्यों करती हो भाई, तुम्हारे तो साक्षात भगवान है ही। अरे साक्षात भगवान तो पहले भी थे, यदि ध्यान साधना नहीं होती तो ये आज भगवान हमारे लिए साक्षात थोड़े ही होते। साक्षात जो भगवान हमको दर्शन दे रहे हैं ये ध्यान के कारण से ही दे रहे हैं। ध्यान यदि हम नहीं करते तो कैसे आते साक्षात भगवान दर्शन देने के लिए? तो ध्यायन तत्पदाम भोजम कृच्छा निर्विविशु प्रजम, बड़ी मुश्किल से वे वहां से ब्रज में गई, बड़ी मुश्किल से, कृच्छ्रात कृच्छ्रात माने बड़ी कठिनाई से ब्रज के अंदर गई। वो जाना ही नहीं चाहती थी, वो ऐसा कृष्ण का अब सानिध्य मिला। देखो सारी वृत्तियां जब कृष्ण में लीन हो गई, लज्जा वृत्ति, संकोच वृत्ति और शिकायत वृत्ति, जो जो कुछ उनकी वृत्तियों में दोष था वो सब का सब जब दोष भगवान ने समाप्त कर दिया और सब वृत्ति भगवान में लग गई, तो इनके वृत्ति में ही नहीं आई कि हम ब्रज में जाएं, हम ब्रज में जाएं, ये वृत्ति आई नहीं उनके। वो देखो कहां जाना, कहां आना, ब्रज में क्या है, यही तो है, यही तो है सब कुछ है जो कृष्ण, ब्रज है तो यही है, पति है तो यही है, पुत्र है तो यही है, माँ है तो यही है, बाप ये तो यही है, इसके अलावा है क्या। ऐसे करके वो बड़ी तल्लीन हो गई, लेकिन बड़ी मुश्किल से वो ब्रज में गई। भगवान ने भेज दिया तब क्या करें, अब इधर भगवान ब्रज में नहीं गए, भगवान अपने जंगल में रवाना हो गए। देखो इनको तो जंगल से ब्रज में भेजा और भगवान अब और आगे जंगल में चले गए, वृंदावनात गतो दूरम चारयन गा सहाग्रज। कैसी ये चीरहरण की लीला है वो, ये चीरहरण तो कहते हैं जैसे माखन चोरी बोलते हैं पर माखन चोरी नहीं होती है। देखो एक तुम भी बनावे या तुम भी, एक तुम भी बना देवे तुम्हें साहब ये क्या, ये तुम भी है। अब तुम भी तो खारी बहुत होती है, तुम्बी के बीज इतने खारे होते हैं आदमी खा ले तो कई देर तक, कई घंटों तक, कई दिनों तक मुंह का कड़वापन नहीं जाए, इतनी खारी होती है तुम्बी। संत लोग तुम्बी क्यों रखते थे, बीच में बात याद आ गई, संत लोग तुम्बी इसलिए रखते थे कि तुम्बी से जैसा कोई खारा नहीं होता, तो संत तुम्बी को देख करके याद करते, अरे संसार कैसा है, ये तुम्बी जैसा है, खारा है, खारा खारा संसार है। तुम भी को देखते ही वो संसार कर रहे, संसार ऐसा तुम भी जैसा है। राम रस मीठा रे कोई पीवे साधु सुजान, यदि संसार में मीठापन है तो केवल भगवान के नाम में रस है, मीठापन इसी में ही है। राम रस मीठा रे कोई पीवे साधु सुजान, तुम भी इसलिए रखते थे तुम्बी को देखते ही विषयों का खारापन याद आ जाए, और तुम्बी को पानी में डालो तुम्बी डूबती नहीं है, कभी ऊपर तैरती है। तो संत लोग तुम्बी को इसलिए रखते हैं कि संसार में रहते हुए भी संसार से ऊपर रहो, तिरते रहो। घर में एक तुम्बी को रखा करना, तुम्बी को रख करके देखना चाहिए तुम्बी है भाई, तुम भी देखते ही खारापन याद आए, तुम भी देखते ही कि ये डूबती नहीं तो अपने को भी डूबना नहीं, हमसे तो तुम भी अच्छी है, ये पानी में नहीं डूबती, पानी में ही रहती है पर डूबती नहीं है, ऐसे हम लोगों को रहना चाहिए। ऐसे लोग तुम भी रखते थे। अस्तु तो भगवान क्या करें, उनको तो भेज दिया ब्रज में और स्वयं आगे वन में गए। वन में गए तो उधर बलराम जी से ने भगवान ने अपने मित्रों से कहा, अरे मित्रों देखो देखो इन वृक्षों को देखो, ये वृक्ष कैसे हैं, परार्थिकांत जीवितान, दूसरों के लिए जीते हैं, ये देखो दूसरों के लिए जीते हैं। ये प्रसंग क्यों आया यहाँ एकदम, ये ऐसा प्रसंग क्यों आया, ये भगवान गोपों को ये शिक्षा, अपने साथियों को शिक्षा देना चाहते हैं कि देखो ये वृक्ष है ना दूसरों के लिए है, तो श्रेष्ठ पुरुष भी दूसरों के लिए होते हैं संसार में। एतावत जन्म साफल्यम देहि नाम ये देहिषु प्राणी अर्थे धिया वाता श्रेय एव आचरित सदा। वृक्षों को देख शिक्षा लेनी चाहिए, अर्थात आज हमारा यहाँ आना हुआ है ये गोपियों को शिक्षा देने के लिए, उनकी आराधना में कोई कमी थी उसको दूर करने के लिए। श्रेष्ठ व्यक्ति का जो भी कर्म होता है वो लोक हित के लिए होता है, तो ये सीधी बात मैं कहकर कि वृक्ष के माध्यम से भगवान बता रहे हैं। और वृक्ष होता है भाई जितना उसमें फल ज्यादा होता है उतना ही वृक्ष नम्र होता है, जिसकी छाया खूब हो जिसमें फल खूब हो वो देखो वृक्ष यूं झूमता रहता है नम्र होता है, और जिसकी छाया दे वो छाया भी नहीं होती, फल है भी बहुत दूर, फल लागे अति दूर। ऐसे ही संसार में जो अभिमानी पुरुष होता है छाया भी किसी को नहीं दे सकता और किसी को फल भी नहीं दे सकता, वो लकड़ जो रहता है खजूर का पेड़ है, देख लो आप। आजकल ये यूकोलिप्टिस के पेड़ है, ये देखो ये उसी की बल्लिया है, यूकोलिप्टिस पेड़ की बल्लिया, थोड़ा 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 धरा ये पत्ती रहेगी बस ऐसे। वृक्ष होता है वो नम्र होता है, तरुणाम नम्र शाखा नाम मध्य नयमुनांगत है। ऐसे चलते 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 इधर सखाओं ने कहा कि देखो कृष्ण आज हम सुबह पहले तुम्हारे कहने से जल्दी आए थे, बिना खाए पियाए हमको तो भूख लगी आई, कोई हमारे लिए भूख का इंतजाम करो। तो भगवान ने कहा कि देखो यहाँ पास में एक यज्ञ हो रहा है, सौत्रामणि यज्ञ, स्वर्ग काम्य या आंगिरस नाम का यज्ञ हो रहा है, आंगिरस नाम का यज्ञ, और बड़े बड़े ब्रह्मवादी ब्राह्मण उस यज्ञ को करवा रहे हैं और स्वर्ग की इच्छा है इनकी, ध्यान देना ये स्वर्ग की इच्छा से यज्ञ कर रहे थे, स्वर्ग काम्य। भगवान की एक लीला से कितने काम बनते हैं, हमने सोचा था, अभी सोचा था कि रास लीला पूरी कर देंगे, पर हाथ की बात थोड़े ही कर दे, नहीं होगा। तो भगवान ने एक लीला में कितनी लीला की, तो ये ब्राह्मण लोग स्वर्ग की इच्छा से यज्ञ कर रहे थे, इनकी स्वर्ग की इच्छा मिटानी है, और बच्चों को भूख लगी आई तो इनकी भी भूख भी दूर करनी है, तो एक कालावत छेदे ने दो दो काम करने हैं भगवान को। तीसरी बात क्या है, भगवान की रास लीला सब लीलाओं में श्रेष्ठ है, ये बात भी बतानी है। तो पहले अभी जो आराधना चली थी गोपियों की, यह है एक तपस्या कह सकते हैं, तपस्या है, व्रत है, अनुष्ठान है, और यह है यज्ञ है। अब जो बता रहे यज्ञ है, तो यज्ञ तपस्या अनुष्ठान ये सब हमारे कहीं यज्ञ ये रास लीला में बाधा न डाल दे, इनके ऊपर नियंत्रण करने के लिए अब ये लीला आ रही है। भगवान के कहने से बिचारे बच्चे लोग गए और ब्राह्मणों से निवेदन किया कि हे पृथ्वी के देवताओं, पृथ्वी के देवता है ब्राह्मण, हे पृथ्वी के देवताओं हम आपसे नम्रता से प्रार्थना करते हैं, हम यहाँ कृष्ण के आदेश से आपके पास आए हैं और बलराम जी ने भी हमको कहा है, हमें बहुत भूख लगी है, क्या हमको आप कुछ खाने के लिए देंगे? आज हम जल्दी रवाना हो गए थे ब्राह्मणों और गाय चराने के लिए गए थे, कृष्ण और बलराम के साथ हम आए थे, तो कलेवा लेवा हम करके नहीं आए, यदि आपकी श्रद्धा हो तो हमको कुछ खाने के लिए दे दीजिए। वो ब्राह्मण एक दूसरे की तरफ देखने लगे, ब्राह्मणों ने सोचा कि अभी तो यज्ञ भगवान के भोग लगेगा, फिर हम यज्ञ करेंगे, फिर उसके बाद ही हम लोग भोजन करेंगे, पहले तो हम किसी को अन्न खिला ही नहीं सकते, और कृष्ण और बलराम ने भेजा है तो हम मना भी नहीं कर सकते। तो ब्राह्मण उधर देखने लगा, कोई इधर देखने लगा, कोई यूं से, कोई सुनी बात अनसुनी कर दी, है ये बच्चे बेचारे भूखे हैं, छोटे छोटे बच्चे, शेनवन तो भी न सुश्रुभु। तब ये बच्चे वापस कृष्ण भगवान के पास आए और कहने लगे महाराज उन्होंने तो हमारी कोई बात सुनी नहीं। भगवान कृष्ण ने कहा अच्छी बात है, देखो परीक्षित, ये ब्राह्मण भूल गए कि ये यज्ञ ही कृष्ण है, ये मंत्र ही कृष्ण है, देवता यजमान यज्ञ धर्म ये कोई सब कृष्ण से अलग थोड़ा ही है, पर इतना उनके विवेक का, वो तो केवल स्वर्ग की इच्छा, हमको स्वर्ग मिले स्वर्ग मिले, वो विधि नैपुण्य में लगे हुए थे, विधि में कोई खराबी नहीं आ जाए, विधान कोई हमारे क्रियाकलाप में कमी नहीं आ जाए, नहीं तो स्वर्ग नहीं मिलेगा, वो विधि नैपुण्य में डूबे हुए थे। क्षुद्राशा भूरी कर्माण, आशा तो उनकी बहुत छोटी है, कर्म करने में बड़ी ताकत लगा रहे हैं, क्या करें बेचारे, वो ब्राह्मण भी विवश थे, उन्होंने कुछ नहीं किया, वो अपने कामना के विवश थे। जब बालकों ने आकर ये कहा तो भगवान ने कहा, अरे भाई तुम अब जाकर के उनकी पत्नियों से कहो, इन पुरुषों के अंदर खिलाने का इतना दिल नहीं है, माताओं के अंदर है, बहनों में खिलाने का दिल होता है, भूखी रह जाएगी पर दूसरे को खिलाने में रह जाएगी, दूसरे के खिलाने में खुद भूखी रह जाएगी। इसीलिए भाई इनका स्थान ऊंचा माना है, स्त्री का स्थान बहुत ऊंचा है, माताओं बहनों का स्थान बहुत ऊंचा है। तो वे ब्राह्मण पत्नियों के पास में गए, भगवान के सखा छोटे छोटे भी बच्चे जाकर अपने कोमल कोमल हाथ जोड़ करके उनके सामने कहे, हे ब्राह्मण पत्नियों, हम लोग आपको नमस्कार करते हैं, हम कृष्ण और बलराम के साथ इस वन में आए थे, सुबह कलेवा करके भी आए, हमको भूख लगी आई, कृष्ण भी भूखे हैं और हम भूखों को आपके पास भेजा है। उन्होंने कहा कि तुम जाकर उन ब्राह्मण पत्नियों से निवेदन करना, तो हम सब लोग भूखे होकर आपसे प्रार्थना करते हैं। उन ब्राह्मणियों ने ये बात सुनी, कृष्ण यहां आए हुए, तुम कृष्ण के साथ आए हो और तुम सब भूखे हो, ब्राह्मणियों को कुछ दिखाई नहीं दिया, उसी समय में वे बहुत सा खाद्य पदार्थ लेकर आए, उन सब बच्चों को भोजन कराया और अपने थाल में कई प्रकार के भोजन, चतुर्विधम बहुगुणम, ऐसा बहुत अच्छा खाद्य लेकर के, भोजन पदार्थ लेकर के वे ऐसी दौड़ी दौड़ी जा रही थी, ऐसी जा रही थी जैसे कलकल करती हुई नदियां समुद्र की ओर जाती हो, ऐसे भी कृष्ण की ओर देखो अभी शत्रु का है, अभी शरण कर रही थी। अभी शरण करने का अर्थ है कि सीधा उनके पास ही जाना, न इधर जाना न उधर जाना, न बोलना न चलना, सीधा उनके पास में गई। पतियों ने मना किया उनको, कहां जा रही हो, अभी तो यज्ञ में बैठना है, बस अब थोड़ा सा समय है, नहीं हम जा रही है। निषिद्ध माना पति भी, भ्रातृ भी, बंधु भी, सुतई, बच्चों ने मना किया, भाइयों ने मना किया, सगे संबंधियों ने मना किया, लेकिन दीर्घ सुत दिशाशया भगवान श्री कृष्ण के विषय में बहुत दिनों से सुन रखा था, ध्यान से सुनना, सुन रखा था, वो आज सुनने के ही परिणति का फल आया है, सुनने के फल का ही अवसर आया है। अरे हमने इतने दिन तक कृष्ण के विषय में सुना, वो कृष्ण पास में ही है, अब चाहे पति मना करो, चाहे पुत्र मना करो, चाहे भाई मना करो, वो तो कृष्ण की तरफ रवाना ही हो गई। ये देखो दीर्घ श्रुत धृताशया, ये शब्द बहुत बड़ा जान देने वाला शब्द है। ये लोग कहते हैं तुम्हारे सत्संग से क्या फर्क पड़ा, अरे फर्क कोई दो हाथ की जगह चार हाथ तो आने से रहे, एक सिर की जगह कोई दो सिर आने से रहे, दो आंख की जगह कोई चार आंख आने से रहे, तुम काहे में फर्क देखते हो, फर्क तो वही भाव में ही होता है। तो दीर्घ श्रुत धृताशया ये खास बात थी, बहुत दिनों से सुन रखा था कृष्ण के विषय में, उन्होंने अपना अंतःकरण कृष्ण को दे रखा था पर मौका नहीं मिला, उसका मौका अब आज मिला। यमुना नदी के किनारे वे वहां गए और उन बच्चों को वहां पर घूमते हुए देखा और उन स्त्रियों ने देखा कि श्री कृष्ण इस समय में आहा क्या विचित्र झांकी है भगवान की, हर लीला में एक एक विचित्र विचित्र झांकी है। सुखदेव जी महाराज ने ऐसे तल्लीन होकर के कथा को सुनाया है, भगवान का ध्यान करते करते कथा सुनाई है, जिसमें दशम स्कंद तो इनकी बड़ी विचित्र प्रेम की वाणी है, ये समाधि की वाणी, प्रेम समाधि की वाणी। श्यामं हिरण्यपरिधिं वनमाल्यवर्ण धातु प्रवाल नटवेशमनुव्रतांसे विन्यस्तहस्तमितरेण धुनानमब्जं कर्णोत्पलालक कपोल मुखाब्जहसं। एक साथी के कंधे पर उन्होंने हाथ रख रखा है और दूसरे हाथ से वे कमल का फूल उछाल रहे हैं और वे ब्राह्मणियां देखती है जो जो हम उनके पास आते हैं त्यों त्यों उनका मुख एकदम खिलता चला जा रहा है, मुस्कुरा रहे वो, कानों के आभूषणों की आभा कपोलों पर पड़ती है और उन कपोलों पर मुस्कुराहट की आभा पड़ती है। कैसा सुंदर उनका मुख मंडल होगा। वो देख करके एकदम देखा कि भाई ये मुखमंडल कोई बार बार तो हमको देखने को मिलेगा नहीं, देखा और अपने हृदय में रख लिया, उस छवि को हृदय में रख लिया बहुत प्रेम से। और बार बार वो रखा तो उनके मन का संताप वैसे ही दूर हो गया जैसे एक संत के मिलने से लोगों का संताप दूर होता है। प्राज्ञम यथा विमतयो विजहुर नरेंद्र, यहाँ पर दो अर्थ होते हैं प्राज्ञ के। एक तो प्राज्ञ है कि जीव जिस समय अपने स्वरूप में स्थित होता है उस समय में जैसे अहम वृत्ति है, बुद्धि वृत्ति है, मनोवृत्ति है, इंद्रिया वृत्ति है, या उसमें एकदम लीन हो जाती गहरी नींद में। गहरी नींद में जिस प्रकार से अहम वृत्ति लीन हो जाती है ऐसे ही भगवान के उस स्वरूप के अंदर वे ब्राह्मणियां लीन हो गई। प्राज्ञम यथा विमतयो विजहुर नरेंद्र। दूसरा यह है प्राज्ञ माने प्रकृष्ट ज्ञानवान, प्रज्ञ एव प्राज्ञ है। प्राज्ञ का अर्थ प्रज्ञ नहीं है, प्रज्ञ तो माने महामूर्ख, अज्ञ माने मूर्ख और प्रज्ञ माने महामूर्ख वो नहीं है। यहां स्वार्थ में अण प्रत्यय हुआ, स्वार्थ अपने ही अर्थ में प्रज्ञ एव प्राज्ञ है। जैसे अश्व एव अश्व कह, जैसे प्राज्ञ को पा करके और दूसरे जितने अभिमान करने वाले पुरुष हैं वो उन प्राज्ञ पुरुष को देख करके जैसे अपना अभिमान छोड़ देते हैं, प्राज्ञम यथा विमतय, ऐसे ही वो बिचारी ब्राह्मणियां जाकर भगवान के अंदर लीन हो गई। वे भगवान के पास में आई, कुछ नहीं बोली, बोले कौन, उनकी वृत्तियां तो लीन हो गई तो भगवान बोले हो, बोलना तो उनको चाहिए था कि हे प्रभु आज आपके जन्म जन्मांतरों के बाद न जाने कितने कर्म कर्मांतरों का प्रत्यवाय दूर हुआ तो आज आपके दर्शन हुए हैं हमको, बोलना तो उनको चाहिए था। वो तो कुछ नहीं बोली, बोले कैसे, वो वाणी तो भगवान के अंदर लीन हो गई, सोचे भी कैसे कि सोच करने वाली बुद्धि वृत्ति उनमें लीन हो गई, क्या बोले वो, तो भगवान बोले स्वागतम वो महाभागा आस्यताम करवाम किम यन्नो दिदृक्षया प्राप्ता उपपन्नमिदं विवह। वाह वाह आपका स्वागत है, स्वागत है, आप हमारे यहाँ आई आपका स्वागत है। जैसी आप लोगों ने ये हमारे प्रति निष्काम भक्ति की है ऐसी निष्काम भक्ति बहुत कम करने वाले लोग हैं और निष्काम भक्ति से मैं बहुत खुश होता हूँ ब्राह्मणी हो। अब देखो आपका यज्ञ का समय हो रहा है, जाओ जाओ और यज्ञ करो, जल्दी जाओ, तुम्हारे पति प्रतीक्षा करते हैं, तुम्हारे लोग जो है वो प्रतीक्षा करते हैं और गृहस्थ के अंदर तो ये यज्ञ वगैरह तो होना अच्छा ही है ना, जाओ और आप आगे मिल लिए बड़ा अच्छा हुआ। अब वो रोती रोती पत्नियां बोलती हैं महिमं विभोरति भवान गदितुं नृशंसं। अरे कृष्ण क्या कठोर वाणी बोली है आपने, हमने तो सोचा था कि हम कृष्ण के पास जाएंगे वो कृष्ण हमको कहेगा कि आओ ब्राह्मणियों, अब तुम्हारा घर गृहस्थ से कोई संबंध नहीं रहा, अब यज्ञ वगैरह से कोई संबंध नहीं रहा, तुम सबकी सेवा करके मुझे ही तो प्राप्त होती, पति की सेवा से तुम मुझे ही तो प्राप्त होती, यज्ञ आदि करके तुम मुझे ही तो प्राप्त होती, तुम मुझे प्राप्त हो ही गई हो, इसलिए अब जाने की जरूरत क्या है, हम तो ये सुनने के लिए बैठी हुई थी। ओहो, तुमने तो बहुत कठोरता से हमको बोल दिया, दया भी नहीं आई तुमको, कह दिया जाओ यहां से। देखो ये जाओ यहां से, ये तो कहते हैं ना जाओ, ये क्या है, जैसे कोई चरस आता है चरस कुएं में से, तो जब चरस की जो लाव होती है उस लाव के थोड़ी धक्का लगाया जाता है, धक्का लगाने से वो चरस थोड़ा दूर जाता है और ज्यादा नजदीक आता है। तो भगवान ने कहा जाओ, जाओ कह करके ज्यादा नजदीक बुलाने के लिए किया है, पर वो बिचारी ब्राह्मणिया समझी नहीं, कहा कि शास्त्रों में तो लिखा हुआ है कि आपके चरणों में जो आ जाता है फिर वो वापस जाता नहीं है, फिर आज आप वापस हमको कैसे भेज रहे हो, शास्त्रों को झूठा पटक रहे हो आप, कितने कितनी हमने यहाँ आपके पास आने के लिए उपालंबे सुनी है, कितना कष्ट पाया है, भाई बंधुओं की लताड़ी सुनी है, फिर हम आपके पास आए हैं और आप हमको भेज देंगे, अब ये भाई बंधु कहेंगे हमको आप क्यों आई भाई, तुम तो कृष्ण के पास गई थी हमारे मना करते करते भी, तो वहीं रहो फिर तुम क्यों आई, तो वो हमको वापस भेजेंगे और आप हमको कहते तुम वहां जाओ, तो हमको तो बीच में आपने यूं ही रख दिया, ऐसा आदेश क्यों देते हो। भगवान कहते हैं अरे हरे ब्राह्मणियों सुनो सुनो, मेरी बात कोई ऐसी नहीं निकलती है, तुम्हारे पति मेरे पास आने पर तुम्हारे से नाराज नहीं होंगे, बहुत खुश होंगे, तुम्हारे माता पिता तुम्हारे भाई तुम्हारे पुत्र बहुत जो है तुम्हारे पर प्रसन्न होंगे, सब अनुमन्यते अनुमन्यते अनुमन्वते अनुमन्वते अनुमन्वाते अनुमन्विरे। तो कहते हैं कि देवता वगैरह सारा संसार तुम्हारे पति पुत्र आदि सब मेरा अनुमोदन ही करने वाले हैं कि तुम कृष्ण के पास गई तो बड़ा अच्छा किया, अनुमोदन करने वाले हैं। प्रेम का एक सूत्र बता देता हूं, उस इतने से सूत्र को याद रखना ब्राह्मणियों, कि ज्यादा पास में बैठने से ही प्रेम नहीं होता है, बल्कि उस प्रेम में क्षीणता आती है, कमी होती है, और दूर रहने में प्रेम ज्यादा बढ़ता है। जाओ जाओ आप अपने स्थान पर ही रहो, पतियों की सेवा करते हुए यज्ञ आदि कर्म करते हुए अपने कर्म में लगे रहो, और अपना मन तुम मुझे दिए रखो, बहुत जल्दी तुम मुझे प्राप्त हो जाओगी। ये प्रेम का सूत्र है, प्रेम मन से होता है देवियों, पास में रहने से नहीं होता है। पास में तो भाई बहुत रहते हैं, पर आपस में मन नहीं मिलता तो बहुत दूर है। भाई भाई एक ही माँ बाप से गोद में पलते हैं, एक ही माँ बाप की गोद में पलते हैं भाई भाई, एक ही घर में रहते हैं, एक ही चूल्हे की रोटी खाते हैं, परंतु वे जब मन नहीं मिलता है तो भाई कैसे अलग रहते हैं, और मन मिलता है तब देखो कुमोदुनी जल में बसे और चंदा बसे आकाश, जो जाही को भावता सो ताही के पास। चंद्रमा के उदित होते ही जो है कुमोदनी खिल जाती है, और जब चंद्रमा अस्त होता है तो कुमोदनी बंद हो जाती है। तो कहां जल में रहने वाले, कहां आकाश में रहने वाला है चंद्रमा, पर दोनों का प्रेम है, इसलिए ज्यादा पास में रहने से प्रेम जरूरी नहीं होता। तुम जाओ। अब वे ब्राह्मणियां आ तो गई वापिस, लेकिन उनको तो भगवान की छवि याद आए, भगवान की वो बातें याद आए, प्रेम भरी बातें, आंख बंद किए हुए हैं। ब्राह्मण बोलता है अरे भाई अपने हाथ में आप लोग ये रखो वो मंत्र बोलने वाले उनको तो पता ही नहीं है, उनके अंदर दूसरा ही मंत्र चल रहा है, उनका तो एक दूसरा ही यज्ञ हो रहा है। ये यज्ञ मामूली नहीं है ब्राह्मणियों का, ब्राह्मण तो यो क्रिया प्रधान यज्ञ में उलझे हुए, और हमारी ब्राह्मणियां इस भगवत प्रेम यज्ञ के अंदर उलझी हुई है। जब स्त्रियों की ये दशा देखी, ऐसा अलौकिक कृष्ण में प्रेम देखा, तो उनके पतियों ने ब्राह्मणों ने विचार किया कि हमारे जीवन को धिक्कार है, क्योंकि इस जिन हमने बहुत विद्या पढ़ी बहुत शास्त्र पढ़े, इन्होंने कोई पढ़ाई नहीं की। अरे पढ़ाई तो वही है जो भगवान से प्रेम करा देने वाली हो। एक भगवान की पढ़ाई पढ़ ली जाए दूसरी पढ़ाई से कोई मतलब नहीं है। जगतगुरु भगवान के अंदर स्त्री होते हुए इनका कैसा विचित्र प्रेम है। इन्होंने कोई जनेऊ धारण नहीं की, कोई गुरुकुल में निवास नहीं किया, कोई उन्होंने आत्मा अनात्मा का विवेचन भी नहीं किया, न कोई उन्होंने तपस्या की, न कोई विशेष इन्होंने कोई क्रियाएं की है। केवल भोजन बनाना और घर का काम धंधा करना इतना ही किया, पर योगेश्वरों के ईश्वर भगवान के अंदर ऐसी दृढ़ भक्ति हो गई इनकी, कैसी विचित्र बात है। वास्तव में देखा जाए तो हम लोग तो भगवान की माया के अंदर ऐसे मोहित हो गए, इस जन्म में तो हमने भक्ति की नहीं, करते नहीं, और अगले जन्म में हम स्वर्ग की इच्छा रखते हैं। देखो ये भूल गए कि स्वर्ग उसी ने ही बनाया है, ये भूल गए कि वैदिक मंत्र अनुष्ठान सब उस कृष्ण से ही निकला है, ये तो बात तो भूल गए, और स्वर्ग के अंदर हम सुख भोगेंगे, कहां जाकर के हमारी बुद्धि अटक गई। और हमारे इन ब्राह्मणियों की बुद्धि देखो, भगवान के अंदर कैसी निश्चल बुद्धि है, निश्चल है और निश्चल है। हमारी तो निश्चल बुद्धि नहीं है, छलवती बुद्धि है, छलवती। ये काम करो और अच्छा फल मिलेगा, ये फल है यही छल है। इनकी निश्चल बुद्धि है और निश्चल बुद्धि है। माया से मोहित होते हुए न जाने हम इस कर्म में कहां कहां भटकते रहेंगे। हे भगवान हमको क्षमा करना, हम आपके दर्शन करने नहीं आ सके। क्यों नहीं गए जी आप? कि हमको तो कंस का डर लगता था, कंस के डर के कारण से हम आपके पास नहीं आ पाए। अब देखो यहाँ ये नहीं आया कि आगे उन्होंने यज्ञ कौन सा किया कि नहीं किया, ये नहीं आया, पर इनका बहुत बड़ा यज्ञ हो गया। क्या यज्ञ हुआ? भगवान में प्रेम हो गया, ब्राह्मणों का भी प्रेम हो गया और ब्राह्मणियों का भी प्रेम हो गया। तो भगवान में जो प्रेम है ये सब कर्मों से श्रेष्ठ प्रेम है। जैसे लोक के अंदर यज्ञ कर्म सबसे श्रेष्ठ कहलाता है, ऐसे अध्यात्म में भगवत प्रेम सबसे ऊंचा जो है यज्ञ है। ये प्रेम यज्ञ सबसे ऊंचा है, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। अब देखो ये यज्ञ आदि समस्त कर्मों पर भी भगवान ने शासन कर लिया। अब देवबल देख रहा है, देखो अब देवबल के ऊपर विचार करते हैं। भगवान अपि तत्रैव बलदेवेन संयुत। भगवान ने देखा कि ब्रज में बड़ी तैयारियां हो रही है। काहे की तैयारी हो रही? यज्ञ की तैयारी हो रही है। खूब सामान इकट्ठा किया जा रहा है, तिल आ रहा है, चावल आ रहा है, जौ आ रहा है, खूब घी के कनस्तर भरे पड़े हैं, बहुत बड़ी भारी सामग्री देखी। तो भगवान ने नंद बाबा से कहा कि नंद जी, पिताजी, बाबा, ये इतनी बड़ी सामग्री किस बात की है? अरे बेटा तुम ये बात पूछते क्यों? ये तो सीधी सीधी बात है, ये तो इंद्र की प्रसन्नता के लिए हम यज्ञ करते हैं। जब इंद्र प्रसन्न होगा हम यज्ञ करेंगे, इंद्र को खुश करेंगे, तो इंद्र बदल बनाएगा, फिर इंद्र बरसात करेगा और बरसात से सारे प्राणी सुखी होते हैं। खाने के लिए अन्न मिलता है, पशुओं को चारा मिलता है और पीने का पानी सबको मिलता है। तो तत्क्षेषेण उपजीवन्ति, वो जब पानी छोड़ता है इंद्र तो सबको जीवन मिलता है। इसलिए ये हमारी एक परंपरा चल रही है बेटा, इस परंपरा के साथ तो हम लोग खिलवाड़ तो नहीं कर सकते ना। कभी भी काम से, कि लोभ से, कि मोह से, कि भय से, कभी इंद्र के इस चली आ रही पद्धति के साथ हम खिलवाड़ तो नहीं कर सकते। भगवान ने कहा कि बाबा एक बात कहूं, हमने तो ये संसार में देखा है, सुना है, मनुष्य को अपने कर्म के अनुसार ही सुख दुख मिलता है। जब सबको अपने कर्म के अनुसार ही सुख दुख भोगना है तो इस इंद्र क्या करेगा। माना कि इंद्र ने खूब बरसात कर दी और खूब अन्न हो गया, लेकिन उस अन्न के पैदा होने से पहले ही कोई आदमी मर जाए तो फिर इंद्र क्या करेगा। जितना घास पैदा होगा उस घास के खाने से पहले ही यदि प्राणी मर गया, कोई गाय वगैरह मर गई, इंद्र क्या करेगा। वस्तु आदि का संबंध है ये हर आदमी के अपने भाग्य से जुड़ा हुआ है बाबा। यदि इंद्र आदि अपने हाथ में ये सामर्थ्य रखते हो तो फिर मनुष्यों को अपने कर्म के अनुसार फल मिलता है, ये बात भूल जानी चाहिए। पर ये बात भुलाई जा सकती नहीं, ये बात केवल अपने पर ही लागू नहीं है बाबा। देवता है और भी ऊंचे लोक में रहने वाले प्राणी, सब पर लागू पड़ती है। किसी पर भी ये बात लागू न पड़े सो बात थोड़ी है। और अपने लोग तो देखो, साधारण आदमी, जंगल के आदमी, जंगल में रहने वाले, यमुना नदी का जल पीते हैं, पशु भी पीते हैं, हम भी पीते हैं, और खेती होती है, अन्न लेते हैं। तो इतना बड़ा यज्ञ वगैरह अपने को कोई कामना तो है नहीं। आप इंद्र के लिए यज्ञ करते हैं, अब देखो ये यज्ञ तो पहले भी करके आए थे, अभी उस यज्ञ में भक्ति सबसे बड़ी थी। कहते इस यज्ञ को आप कर तो रहे हो पर इस यज्ञ से लाभ कुछ नहीं हो रहा है। बढ़िया तो यह है कि आप इस गोवर्धन पर्वत के लिए यज्ञ करो और गोवर्धन पर्वत के लिए सब सामग्री दो, क्योंकि पर्वत के ऊपर वृक्ष होता है और वृक्ष होता है वो अपने अंदर ऐसे तत्व है वृक्ष के अंदर, वो जो है बदल के पानी को खींचता है। जहां ज्यादा हरियाली होती है वहां पर पानी होता ही है, और पर्वत के ऊपर हरियाली होगी तो वो जल्दी बरसात करवा लेगी। इसलिए आप गोवर्धन पर्वत को सिंचित कीजिए, उसको यज्ञ से प्रभावित कीजिए। ठीक है बेटा, तू क्या वो ही सही। अब गोवर्धन पर्वत के ऊपर गए सब लोग, गोवर्धन पर्वत के वहां पर घी है, तेल है, चावल है, जो है ये डालने लगे। भगवान ने देखा कि यहाँ इनको कुछ, ये तो बेचारे सीधे साधे आदमी है ब्रजवासी, इन ब्रजवासियों को कोई न कोई ऐसी लीला बता देवे ताकि इनका विश्वास हो जाए गोवर्धन पर्वत पर। तो हमारे भगवान ने क्या किया, एक रूप और बनाया और गोवर्धन पर्वत के नीचे खड़े हो गए, यूं कमर पर हाथ रख करके, मुंह फाड़ करके, ओ ब्रजवासियों, तुमको कृष्ण ने जो मेरे यज्ञ के लिए कहा है ये बात बहुत सार की है। तुम्हारे पदार्थ ये देखो, मैं मुंह खोलता हूं, उस खुले हुए मुख में सब पदार्थ डालते जाओ। भगवान ऊपर से कह रहे हैं, देखो बाबा ये गोवर्धन पर्वत स्वयं बोल के लेते हैं, क्या ऐसे इंद्र बोल के लेते हैं। नहीं बेटा, इंद्र तो ऐसा बोल के नहीं लेते हैं, तो आप इन्हीं को ही दीजिए, इन्हीं को ही दीजिए। अब उनको ये पता नहीं कि कृष्ण ही है। अब वो डालते गए, घी डालते गए, सामग्री डालते गए, वो लेते गया भगवान, लेते गए और सब लोग अपने अपने घरों में आ गए। इंद्र ने देखा कि ये तो काम अच्छा नहीं किया कृष्ण ने। देखो जब इंद्र को गरज होती है तब तो वे हजार बार आकर के भगवान के पैरों में पड़ते थे, और जब इंद्र का आज अभिमान टूटा तो इंद्र जो है वो भगवान को भगवान मानना भूल गया और एक नंद जी के छोरे के बहकाने में ब्रजवासियों ने ऐसा किया, मेरा यज्ञ बंद किया, इसका बदला लेने के लिए वो ब्रज के ऊपर टूट पड़ा। सामवर्तक नाम के बदलों को बुलाया और कहा कि हाथी की जो सूंड होती है ना, उसके अनुसार मोटी मोटी बरसात होनी चाहिए ब्रज में। तो हाथी के सूंड जैसी मोटी मोटी बरसात, कितने पाइप खुले होंगे, वो इतने मोटे 4 इंच के 5 इंच के पाइप हो, ऐसे वहां से बरसा बरसने लगी। थोड़ी देर में सब हाई त्राही मच गई। लोग दौड़े, अरे कृष्ण देखो इंद्र कुपित हो गया, इंद्र कुपित हो गया, बचाओ बचाओ, बिना ऋतु के इतनी बरसात आ गई, देखो हमारे पशु, अरे तुम पशु ले आओ, आ जाओ मेरे पास, आ जाओ, ऐसे करके भगवान ने सबको बुलाया। बुलाया भगवान ने, कहां बुलावे कि अपने गोवर्धन पर्वत की पूजा की थी, पर्वत ही काम आएगा। तो भगवान ने उस गोवर्धन पर्वत को तो ऊंचा उठा लिया और उसके नीचे बहुत विशाल जगह बनी हुई, सबको उसमें आ जाओ, यही आ जाओ अपने। तो सब खाने पीने का सामान लेकर के पर्वत के नीचे आ गए और वहीं पर बस पूरी परोठी बनाने लगे सब, और बड़े प्रेम से सब खाने लगे, रहने लगे। इंद्र खूब जोर से बरसात करे, अब बरसात करे तो भाई करता रहे ऊपर, तो खूब पर्वत के नीचे चले गए हम, और भगवान रक्षा करने वाले। एक दिन बरसात, 2 दिन बरसात, 3 दिन बरसात, 7 दिन तक ये बरसात होती रही। भागवतकार 7 दिन का बड़ा संबंध है, क्योंकि 7 दिन के बाद तो सब अवधि समाप्त हो जाती है। 7 दिन तक ये जो है बरसात चली, 7 दिन तक ये कथा चली, 7 दिन तक ये बरसात चली, 7 दिन का बड़ा संबंध है इसमें। तो 7 दिन तक ये चलते चलते खूब पानी पानी हो गया और भगवान बड़े खुश हो गए इंद्र से। अब देखो अब क्या हुआ कि इंद्र ने देखा कि अरे हमारी टंकी खाली हो जाएगी, इतने 7 दिन तक इतना पानी मेरा व्यर्थ हो गया, कुछ भी काम नहीं आया, तो भाई बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो 1 महीने भी नहीं करेगा, अरे 1 महीने वो 7 वर्ष तक भी नहीं, ऐसे ही रहेगा ये। तो इंद्र अपना आप ही चुप हो गया। जब इंद्र अपने आप ही चुप हो गया तो और देवताओं ने कहा, आज इसकी खबर अच्छी ली है भगवान ने। तो और देवताओं ने बड़े उत्साह के साथ दुंदमियां बजाई, अपने भी बजाओ, अपने भी बजाओ आज, क्यों देवता खुश हो गए और भगवान खुश हो गए, खूब बढ़िया धुंध भी बजी और सब जो है ब्रजवासी खुश हो गए। खुश होने पर उस ब्रजवासियों ने नंद जी से पूछा, नंद राय जी आप कुछ हमसे बात छिपाते हो, क्यों कि ये देखो ये आपका छोकरा कोई मामूली छोकरा नहीं लगता है, आपको पता है और आप हमको बताते नहीं हो। देखो ये जन्मा तब से करामात दिखा रहा है, पूतना को मार दिया देखो, और प्रलंबासुर अघासुर बकासुर न जाने कितने असुरों को मारा, और इस गोवर्धन पर्वत को इसने धारण कर लिया एक हाथ पर, 7 दिन तक खड़ा ही रहा है ये। आप इसके विषय में कुछ जानते हो क्या? नजी का भाई मैं जैसे आप हो वैसे मैं कुछ नहीं जानता हूं, एक बार गर्गाचार्य जी ने मुझे जरूर बताया था, जब इसका हमने नामकरण करवाया तो गर्गाचार्य जी ने कहा था कि इसकी जन्म कुंडली और नारायण की जन्म कुंडली के ग्रह नक्षत्र सब मिलते हैं, और ये कहा था कि इसके सहारे से तुम अनेक विघ्नों को पार कर जाओगे, ये कहा था उन्होंने, और ज्यादा हमको कुछ पता नहीं है। इतने में ही भगवान के पास में जो है इंद्र और ये कामधेनु दोनों वहां एक साथ पहुंचे। इंद्र आ गया वहां और कामधेनु भी आई। इंद्र आकर के भगवान के चरणों में पड़ गया कि महाराज बड़ी भारी गलती हो गई मेरे से। देखो गलती हो जाए कोई बड़ी बात नहीं है, हो जाए गलती, पर कम से कम गलती को गलती मान करके क्षमा याचना पूर्वक उस गलती को जो है समाप्त तो करना चाहिए। इंद्र से गलती हुई, भगवान को बुरा नहीं लगा, गलती हो गई। जब इंद्र ने आकर ये कहा कि महाराज मैं आपसे क्षमा चाहता हूं, आपका अवतार जो ये हुआ है ये तो महाराज हमारे जैसों के कान पकड़ने के लिए हुआ है, आप हमारे पिता हो, आप हमारे गुरु हो, पिता गुरुस्वम जगताम अधीश है, आप जगत के स्वामी हो, आपको खूब अधिकार है कि हमारे जैसों का कान आप पकड़ो। और मैं तो महाराज खूब अभिमान में फूल गया था, हमारे जैसे अभिमानियों का अभिमान आप दूर करो। आपने हमको त्रिलोकी का राजा बना दिया और हम ऐसे अंधे हो गए। महाराज गलती तो हो गई, समझे तो हम थे नहीं, अब हो गई सो हो गई। महाराज क्षण तुम प्रभु था रसि मूड चेतस है। देखो इंद्र ने बहुत अच्छी बात की, आप हमें क्षमा कर देना। यदि हम लोग गलती नहीं करेंगे तो दुनिया को क्या पता चलेगा कि भगवान क्षमा करने वाले हैं। बच्चा यदि चाहे जहां मलमूत्र नहीं करेगा, मां की गोद में इधर तो मां का गौरव का क्या पता चलेगा। मां की मातृता इसी में ही है कि बच्चे के अपराध को सहन करती है, तो मां मां कहलाती है। मां का कोई ऋण उतार सकता है? इसी कारण से नहीं उतार सकता। यदि बच्चा यदि बचपना न करे, बच्चा यदि गलती न करे, बच्चा कभी कभी मां का दूध पीता हुआ मां के शरीर में कष्ट देता है, मां फिर भी दूध पिलाती है, पालन करती है। इसलिए महाराज आप अपने नाम को सार्थक करते हैं तो हमारे जैसों को आप क्षमा करेंगे, तभी कर पाएंगे। हे कृष्ण, हे विज्ञान स्वरूप, हे संपूर्ण प्राणियों की आत्मा, हे सबके बीच मैं आपको बार बार क्षमा के लिए प्रार्थना कर रहा हूं, क्योंकि मैंने आपके सारे बाड़े गोश्त सब पानी पानी से भर के बड़ा अपराध किया। आपने मेरा यज्ञ बंद किया तो इससे मैं अपने तीव्र क्रोध में और अभिमान में डूब गया। अब महाराज आपकी शरण में आया हूं, अब भी मैं अभिमानी हूं क्या? अभी भी मैं क्रोधी हूं? ये क्रोध और अभिमान कब तक है? जब तक आपकी शरण में नहीं था तब तक। अब तो क्षमा कीजिए महाराज। भगवान कहने लगे, अरे तुम्हारी बात से मैं बहुत खुश हुआ हूं, तुम्हारे अभिमान ज्यादा बढ़ गया था, इसी कारण से मैंने ये यज्ञ बंद किया। मैंने सोचा कि सारी पृथ्वी सब प्राणी तुम्हारी प्रसन्नता के लिए यज्ञ करते हैं, यदि मैं भी तुम्हारी प्रसन्नता के लिए यज्ञ करने लगूंगा तो दुनिया में तुम्हारा अभिमान ज्यादा बढ़ेगा और लोग भी देखेंगे कि कृष्ण की अपेक्षा इंद्र ज्यादा बलवान है, तो लोग मुझसे हटेंगे और तेरा अभिमान बढ़ेगा। इसलिए तेरे अभिमान को दूर करने के लिए और लोगों में मेरे प्रति निश्चल भक्ति पैदा करने के लिए मैंने ये काम किया है, पर तुम मेरी शरण में आ गए, अब तेरे अभिमान का तो जो है उत्तरदायित्व तो मैंने अपने में ले लिया है। जाओ, अब मेरी आज्ञा है कि तुम सुचारू रूप से अपने इंद्र पद को संभालो। इतने में ही कामधेनु बोली, महाराज हम इंद्र विंद्र को नहीं जानते, हम तो एक आपको ही जानते हैं, हमारे इंद्र तो आप ही हैं। हम महाराज आपका बहुत बड़ा यहाँ अभिषेक करना चाहते हैं, हम आपके अभिषेक करेंगे। तो भगवान विराजमान हो गए। देखो अभिषेक दो चीज से होता है, दूध से और जल से, तो भगवान तो यूं विराजमान हो गए। देवताओं को पता चला, ऋषि मुनियों को पता चला, अरे अरे जल्दी आओ जल्दी, क्या अरे कृष्ण का अभिषेक हो रहा है, अभिषेक। सब आगे ऋषि मुनि देवता गंधर्व विद्याधर सिद्ध चारण तुम्बरु नारद आदि सब आगे। भगवान तो विराजमान है, देखो भाई अब मध्यम विश्राम तो होगा ही होगा, तो आप लोग इस झांकी को थोड़ा याद रखना कि भगवान विराजमान, चारों तरफ संत महापुरुष विराजमान, वहां जो है कामधेनु तो अपना भगवान के ऊपर दूध डाल रही है और इंद्र अपने ऐरावत हाथी की सूंड में लाया हुआ आकाश गंगा का जल डाल रहा है और सब लोग वहां पर बड़े आनंद के साथ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव and
वासुदेव
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव
हे नाथ नारायण वासुदेव
20 मिनट का है।
नाथ
नारायण वासुदेव नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव
हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव
हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव
हे नाथ नारायण वासुदेव
हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे राम 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 हरे हरे
बाबा
हरे राम हरे राम 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 हरे हरे
हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे
हरे
Rama, Rama, Rama.
Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare,
Hare Ram, Hare Ram.
Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare.
Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.
Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare.
Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare.
Hare Krishna,
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare
Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare.
Hare Ram, Hare Ram. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama. Hare Hare.